आगे सबक देखिए भाई। قال ولو شهد كل واحد من الشريكين على صاحبه بالعتق سعى العبد لكل واحد منهما في نصيبه موسرين كانا او معسرين عند ابي حنيفه رحمه الله وكذا اذا كان احدهما موسرا والاخر معسرا। भाई गुज़श्ता सबक में मसला जिक्र हो रहा था कि एक गुलाम है, दो आदमियों के दरमियान मुश्तरक है और उन दोनों में से एक अपने हिस्से को आजाद कर देता है, तो इस सूरत में उस मुअतिक को देखा जाएगा कि वो मालदार है या तंगदस्त है। अगर वो मालदार है तो उससे जमान लिया जा सकता है और अगर वो तंगदस्त है तो फिर उस पर जमान नहीं आता। तो इमाम साहब के नजदीक अगर दो शरीकों में से एक शरीक अपने हिस्से को आजाद कर दे तो अगर ये मुअतिक मालदार है तो दूसरे शरीक को तीन इख्तियार हैं, वो चाहे तो अपने हिस्से के गुलाम को भी वैसे ही आजाद कर दे और वो चाहे तो इस मुअतिक मुसिर से यानी जो मालदार मुअतिक है इससे जमान ले ले और चाहे तो गुलाम से सई करवा ले। और अगर मुअतिक तंग दस्त है तो फिर उससे जमान नहीं लिया जा सकता। तो अलबत्ता बाकी दो इख्तियार होंगे उस शरीक को, वो अपने हिस्से को चाहे तो वैसे ही आजाद कर दे और चाहे तो गुलाम से सई करवा ले। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि यहां शरीक को कोई इख्तियार नहीं है, मुअतिक को देखा जाएगा। अगर वो मालदार है तो फिर उसका शरीक सिर्फ इस मुअतिक से जमान ले सकता है और अगर वो मुअतिक तंग दस्त है तो फिर ये जो शरीक है ये सिर्फ गुलाम से सई करवा सकता है। और नीज दूसरा इख्तिलाफ इमाम साहेब और साहिबैन का ये था कि इमाम साहेब के नजदीक अगर शरीक मुअतिक से जमान ले ले तो वो मुअतिक गुलाम पर रुजू कर सकता है और उससे सई करवा सकता है, जबकि साहिबैन के नजदीक मुअतिक जमान अदा करने के बाद भी गुलाम पर रुजू नहीं कर सकता, उससे सई नहीं करवा सकता। और तीसरा इख्तिलाफ वला के बारे में था। इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर मुअतिक को जमान देना पड़े फिर तो सारी वला उस मुअतिक ही को मिलेगी और अगर वो शरीके आखर ने अपने हिस्से को भी आजाद कर दिया या गुलाम से सई करवा ली तो इस सूरत में वो भी मुअतिक बन जाएगा। लिहाजा इन दोनों सूरतों में वला के अंदर दोनों शरीक होंगे भाई, दोनों आदमी वला के अंदर शरीक होंगे। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इताक के अंदर तजज्जी नहीं हो सकती, लिहाजा सारी वला जो है मुअतिक को मिलेगी क्योंकि जब उसने अपना हिस्सा आजाद किया तो वला के अंदर तकसीम नहीं हो सकती तो सारा ही गुलाम आजाद हो गया, तो लिहाजा सारी वला सिर्फ मुअतिक को मिलेगी। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया था कि इस मसले के अंदर जो इमाम साहेब और साहिबैन का इख्तिलाफ है उसकी बुनियाद जो है दो जाब्तों पर है। एक जाब्ता यह कि क्या इताक में तजज्जी हो सकती है या नहीं हो सकती, इसमें भी इमाम साहेब और साहिबैन का इख्तिलाफ है। इमाम साहेब के नजदीक इताक में तजज्जी हो सकती है और साहिबैन के नजदीक इताक में तजज्जी नहीं हो सकती। और दूसरा इख्तिलाफ इस जाब्ते में है कि अगर मुअतिक मालदार हो तो क्या फिर गुलाम से सई करवाई जा सकती है या नहीं। तो साहिबैन फरमाते हैं जब मुअतिक मालदार हो तो फिर इस सूरत में गुलाम से सई नहीं करवाई जा सकती, जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि मुअतिक मालदार ही क्यों ना हो फिर भी गुलाम से सई करवाई जा सकती है। और फिर गुज़श्ता सबक के अंदर इस मसले की इल्लत जिक्र की थी साहिबे हिदाया ने। साहिबे हिदाया ने बतलाया था कि साहिबैन के मजहब पर इस मसले की तखरीज वाज़ह है। मैंने बताया था तखरीज का एक माना यह है कि अइमा सलासा से कोई कौल और कोई मसला जिक्र हो लेकिन उसकी उन्होंने ज्यादा तशरीह न की हो तो उन्हीं के उसूलों की रोशनी में, देखो हर एक के अपने अपने उसूल हैं, इमाम साहेब और साहिबैन इख्तिलाफ करते हैं बाज जगहों पर, तो उनके हर एक के अपने उसूल और जाबते होते हैं, तो लिहाजा आइमा से कोई कौल मनकूल हो और उन्होंने उसकी कोई ज्यादा तशरीह नहीं की तो उन्हीं के जाबतों की रोशनी में उस कौल की तशरीह करना और वजाहत करना, इसको तखरीज कहते हैं। इसी तरह तखरीज का एक माना है मसले की वजह बयान करना, उसकी इल्लत बयान करना, यानी उसकी तौजीह करना, और मैंने बताया यहां यही माना मुराद है। साहिब हिदायत यहां पर इमाम साहेब और साहिबैन का जो कौल है उसकी इल्लत और वजह बयान फरमा रहे हैं कि उनका यह कौल इस तरह क्यों है। तो बताया कि साहिबैन के कौल की तखरीज जो है वो तो जाहिर है, इसलिए क्योंकि साहिबैन के नजदीक जब मौतिक मालदार हो तो गुलाम से सही नहीं करवाई जा सकती, लिहाजा मौतिक गुलाम पर भी रुजू नहीं कर सकता, क्योंकि वो गुलाम पर रुजू करेगा तो गुलाम से तो सही करवाना पड़ेगी। लिहाजा जब मौतिक मालदार हो और वो जमान अदा कर दे तो वो फिर गुलाम पर रुजू नहीं कर सकता, और नीज वला सारी की सारी जो है मौतिक को मिलेगी क्योंकि एताक में तजज्जी नहीं हो सकती। जबकि इमाम साहिब के नजदीक अगर मौतिक मालदार हो तो फिर शरीक को तीन इख्तियार होते हैं, एक खियारे एताक, एक खियारे तजमीन और एक खियारे इस्तेसा। खियारे एताक इसलिए होता है क्योंकि एताक में तजज्जी हो सकती है इमाम साहब के नजदीक, मौतिक ने कुछ हिस्सा आजाद किया है तो बाकी हिस्सा अभी भी दूसरे का ममलूक है, वो उसको आजाद कर सकता है, तो उसे खियारे एताक भी होगा। और नीज वो जो मौतिक है उसने जिनायत की है कि इसने दूसरे शरीक के हिस्से को खराब कर दिया कि वह अब इसको गुलाम बनाकर भी नहीं रख सकता और उसको बेच भी नहीं सकता, लिहाजा मौतिक से जमान भी वसूल किया जा सकता है और नीज गुलाम से सई भी करवा सकता है ये शरीक। वजह यह कि इस गुलाम के अंदर इसके हिस्से की मालियत बंद हो गई है, अगरचे इसमें गुलाम का कोई दखल नहीं, गुलाम का कोई इख्तियार नहीं, गैर इख्तियारी तौर पर उस शरीक के हिस्से की मालियत गुलाम के अंदर बंद हो गई है, लेकिन फिर भी गुलाम से सई करवाई जा सकती है। और नीज अगर मौतिक जमान अदा कर दे तो वो भी गुलाम से सई करवा सकता है। वजह यह कि जिस तरह वो शरीक गुलाम से सई करवा सकता है क्योंकि उसके हिस्से की मालियत गुलाम के अंदर बंद है, इसी तरह जब मौतिक जमान अदा कर देगा तो ये उस शरीक के कायम मकाम हो गया, अब इस मौतिक की कुछ मालियत बंद हो गई गुलाम के अंदर, तो जिस तरह वो शरीक को गुलाम से सई करवाने का इख्तियार था इसी तरह अब इस मौतिक को भी इख्तियार है, ये गुलाम से सई करवा सकता है भाई। और फिर मैंने यहां आपको जाब्ता बतलाया था कि ये जो मुकातब है, ये जो मुदब्बर है और ये जो उम्मे वलद है, इनको बेचा नहीं जा सकता क्योंकि इनका हक आजादी जाया होता है, इनको बेचा जाएगा तो वहां तबद्दुले मिल्क आएगा कि इनका मालिक बदल जाएगा, और मालिक जब बदलेगा तो फिर वो तो इनको आजादी नहीं देगा तो इनका हक आजादी जाया होगा, लिहाजा ये जो मुकातब है, मुदब्बर है और उम्मे वलद ना इनको बेचा जा सकता है क्योंकि बेचने में भी तबद्दुले मिल्क है, ना इनको हिबा किया जा सकता है क्योंकि हिबा करने और तोहफे के तौर पर किसी को देने में भी तबद्दुले मिल्क है, मालिक बदले, मिल्कियत बदलेगी, और नीज ये किसी को सदका भी नहीं किए जा सकते क्योंकि सदका करने में भी वो फकीर इसका मालिक बनेगा तो तबद्दुले मिल्क आएगा, और नीज इनकी वसीयत भी नहीं की जा सकती क्योंकि वसीयत के अंदर भी मूसा लहू जो है वो इनका मालिक बनेगा तो तबद्दुले मिल्क लाजिम आएगा। तो लिहाजा ये जो मुकातब, मुदब्बर और उम्मे वलद हैं इनमें तबद्दुले मिल्क जायज नहीं। तो यहां जिक्र किया था साहिब हिदाया ने कि जब मौतिक ने जमान अदा कर दिया, मौतिक मालदार है और उसने अपना हिस्सा तो आजाद कर दिया है तो दूसरे शरीक ने इससे जमान ले लिया, तो जब मौतिक ने जमान अदा कर दिया तो ये उस शरीक के हिस्से का मालिक बन गया, तो इस पर इश्काल होता है कि ये गुलाम तो मुकातब के दर्जे में हो चुका था, यहां तो तबद्दुले मिल्क जायज ही नहीं है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मौतिक जमान अदा करने के बाद दूसरे शरीक के हिस्से का मालिक बन गया। तो जवाब दिया कि वो जमान जो दे रहा है वो जुर्म उसने किया है कि दूसरे का हिस्सा खराब किया है, वो जो जमान दे रहा है मालिक बनने के लिए नहीं दे रहा, बल्कि किस लिए दे रहा है कि उसने जुर्म किया है, उसने दूसरे का हिस्सा खराब किया है। हां अलबत्ता जमान देने की वजह से जिमनन ये उसका मालिक बनेगा और जिमनन मालिक ये बन सकता है। हां अगर ये कसदन मालिक बनना चाहता तो कसदन मालिक नहीं बन सकता भाई, लेकिन जिमनन जिमनन मालिक बन सकता है भाई। तो यूं ही हो गया, गोया सारा गुलाम ही इसी का हो गया, इस मौतिक का। कुछ इसने वैसे आजाद कर दिया है और कुछ में इसने सही करवा ली है, तो सारी वला इसी को मिलेगी। और अगर मौतिक तंग दस्त हो तो फिर इस सूरत में शरीक को इख्तियार है, वो चाहे तो अपने हिस्से को आजाद कर दे और चाहे तो गुलाम से सही करवा ले। और फिर साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया कि गुलाम जब सही कर रहा है और उसने अपने निसफ हिस्से की कीमत शरीक को अदा कर दी, तो क्या अब यह मुस्तसा गुलाम मुअतिक पर रुजू कर सकता है कि तुम्हारी वजह से मुझे यह माल देना पड़ा? तो इसमें हमारे तीनों अइम्मा का इत्तेफाक है कि नहीं, गुलाम जो है वह मुअतिक पर रुजू नहीं कर सकता। अलबत्ता इस मसले की इल्लत में इख्तिलाफ है। इसमें तो हमारे अइम्मा का इत्तेफाक कि गुलाम जमान अदा करने के बाद यानी सही करने के बाद यह मुस्तसा गुलाम मौतिक पर रुजू नहीं कर सकता। अलबत्ता इल्लत में इख्तिलाफ है कि रुजू क्यों नहीं कर सकता। मैंने आपको बतलाया था कि जो मुअतकुल बाज होता है यानी वो गुलाम जिसके कुछ हिस्से को आजाद कर दिया जाए, यह मुअतकुल बाज इमाम साहिब के नजदीक मुकातब के दर्जे में है, यानी है अभी भी गुलाम ही, अभी भी गुलाम है, ये माल देकर अपने आप को आजाद करवा रहा है। जबकि साहिबैन के नजदीक ये जो मुअतकुल बाज होता है ये आजाद के दर्जे में है, ये आजाद हो चुका है, अलबत्ता इस पर देन है, अब इसको वो देन अदा करना पड़ेगा, तो ये सही करके कोशिश करके कामकाज करके वो देन अदा करेगा। तो मसला जिक्र हो रहा था कि ये जो मुस्तसा गुलाम है इसने जमान अदा कर दिया शरीक को, तो क्या अब यह मौतिक पर रुजू कर सकता है? तो इमाम साहब और साहिबैन का इसमें तो इत्तेफाक है कि ये मुस्तसा गुलाम मौतिक पर रुजू नहीं कर सकता। अलबत्ता इसकी वजह क्या है, ये रुजू क्यों नहीं कर सकता, उस इल्लत के अंदर इख्तिलाफ है। इमाम साहब के नजदीक ये जो पैसे अदा कर रहा था ये अपनी आजादी के लिए अदा कर रहा था, ये मुकातब था, अभी ये आजाद हुआ ही नहीं था, तो ये अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए यह माल अदा कर रहा था, लिहाजा मौतिक पर यह रुजू नहीं कर सकता, यह तो अपने फायदे के लिए माल अदा कर रहा था। और साहिबैन के नजदीक भी यह मुस्तसा जो है मौतिक पर रुजू नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि यह मुस्तसा जो है यह आजाद है और यह देन अदा कर रहा है, लेकिन यह कोई मौतिक का देन अदा नहीं कर रहा, खुद इसकी अपनी जात के ऊपर देन है, यह उसको अदा कर रहा है। अगर यह उस मौतिक का देन अदा कर रहा होता फिर यह मौतिक पर रुजू कर सकता था, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं। तो हमारे तीनों अइमा के नजदीक मुस्तसा गुलाम जो है वह मौतिक पर रुजू नहीं कर सकता जमान अदा करने के बाद। जबकि इसके मुकाबले में एक मरहून गुलाम है और उसका राहिन जो है वह तंगदस्त है, उस राहिन ने अपने इस मरहून गुलाम को आजाद कर दिया, तो याद रखो इस सूरत में वो जो मुर्तहिन है वो इस मरहून गुलाम से सही करवाएगा और उसके जरिए अपना कर्जा वसूल कर लेगा। तो ये जो मरहून गुलाम है ये बाद में राहिन पर रुजू कर सकता है। वजह यह कि ये जो मरहून गुलाम था, मरहून गुलाम ने जो माल अदा किया है वो कोई अपनी आजादी के लिए अदा नहीं किया, आजाद तो इसको पहले से ही कर दिया था राहिन ने। तो इमाम साहब के नजदीक ये चूंकि अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए यह माल अदा नहीं कर रहा था, ये इसको वैसे ही राहिन की वजह से अदा करना पड़ा, तो लिहाजा ये राहिन पर रुजू कर सकता है। और जबकि साहिबैन के नजदीक भी ये मरहून गुलाम जो है राहिन पर रुजू कर सकता है, इसलिए क्योंकि इस मरहून गुलाम ने जो जमान अदा किया है, जो कर्ज अदा किया है, वो कर्ज इस गुलाम पर नहीं था, वो तो राहिन पर था जो इस गुलाम को अदा करना पड़ा। मालूम हुआ मरहून गुलाम राहिन पर रुजू कर सकता है जमान अदा करने के बाद। इसमें भी हमारे तीनों अइम्मा का इत्तेफाक है, अलबत्ता उसकी इल्लत में इख्तिलाफ है। इमाम साहब के नजदीक इसलिए रुजू कर सकता है कि इसकी गर्दन तो पहले ही आजाद हो चुकी थी और फिर भी इसको सही करना पड़ी, और साहिबैन के नजदीक इसलिए रुजू कर सकता है क्योंकि इसने जो दैन अदा किया है वो इसके अपने ऊपर नहीं था बल्कि राहिन के ऊपर था। उसके बाद साहिब हिदाया ने इमाम शाफई रहिमहुल्ला का मजहब जिक्र फरमाया। इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि जब मौतिक मालदार हो, जब मौतिक मालदार हो तो इस सूरत में शरीक आखर सिर्फ मौतिक से जमान ले सकता है। मालूम हुआ मौतिक के मालदार होने की सूरत में इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कौल भी साहिबैन रहमहुल्लाह के कौल की तरह है, लेकिन अगर मौतिक तंगदस्त है तो फिर साहिबैन तो फरमाते थे कि गुलाम से सई करवाई जाएगी, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते नहीं, यहां गुलाम से सई नहीं करवाई जा सकती क्योंकि गुलाम ने कोई जिनायत नहीं की और ना वो इस आजादी पर राजी था, और नीस बाकी के निसफ को आजाद भी करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसमें दूसरे शरीक का नुकसान है, और नीस दूसरे शरीक को जामिन भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो तंगदस्त है। तो न इताक की सूरत है यहां पर, न गुलाम से सही करवाने की सूरत है और न मौतिक को जामिन बनाने की सूरत है। तो लिहाजा इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस सूरत में गुलाम का कुछ हिस्सा आजाद ही रहेगा और कुछ हिस्सा गुलाम ही रहेगा, और इस गुलाम को बेचा भी जा सकता है और हिबा भी किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। लेकिन हम जवाब देते हैं कि नहीं, कि सई के लिए जिनायत का होना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी के हिस्से की मालियत गुलाम के अंदर बंद हो जाए तो इस सूरत में भी गुलाम से सई करवाई जा सकती है, और नीस आपके कौल को लिया जाए तो गुलाम के अंदर इत्क और रिक दोनों जमा हो गए, हालांकि इत्क कुवत का नाम है कि इंसान अपनी जात का मालिक होता है, और रिक जो है यानी गुलामी जो है वो ज़ौफ का नाम है कि इंसान अपनी जात का मालिक नहीं होता, और एक ही शख्स के अंदर कुवत और ज़ौफ दोनों जमा हो जाएं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी जात का मालिक हो भी और मालिक न भी हो। भाई एक वक्त में एक चीज हो सकती है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। अब आइए आज के सबक पर। काला वलौ शहीद कुल्ल वाहिदिन मिन अश्शरीकैन अला साहिबिहि बिल इत्की सअल अब्दु लिकुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा फी नसीबिहि मुसिरैन काना औ मुसिरैन इंद अबी हनीफा रहिमहुल्लाहु तआला वकदा इदा कान अहदुहुमा मुसिरन वल आखरु मुसिरा। भाई सूरत मसला ये कि एक गुलाम दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका है। भाई मसलन एक गुलाम है जैद और अमर के दरमियान मुश्तरक है, निसफ गुलाम का मालिक जैद है और निसफ गुलाम का मालिक अमर है। अब इन दोनों में से हर एक इकरार करता है कि शरीक आखर ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया है, और वो शरीक आखर इसका इनकार करता है। मसलन अमर कहता है, अमर ये इकरार करता है कि जैद ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया है, जबकि जैद इसका इनकार कर रहा है कि मैंने आजाद नहीं किया, और जैद का यह ख्याल है, जैद यह इकरार कर रहा है कि अमर ने अपने निसफ को आजाद कर दिया है और अमर इसका इनकार कर रहा है। तो दोनों में से हर एक अपने शरीक के बारे में यह इकरार कर रहे हैं कि उसने अपने हिस्से को आजाद कर दिया है, और दूसरा शरीक वो इसका इनकार कर रहा है कि मैंने अपने हिस्से को आजाद नहीं किया। तो इस सूरत में याद रखो, इमाम साहेब फरमाते हैं कि गुलाम से सई करवाई जाएगी, गुलाम से सई करवाई जाएगी, गुलाम दोनों के लिए सई करेगा, दोनों के हिस्से की कीमत अदा करके आजाद हो जाएगा। वजह यह कि इमाम साहेब फरमाते हैं कि जब दो शरीकों में से एक ने इकरार कर लिया कि दूसरे ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया है, अगरचे दूसरा उसका इनकार कर रहा है, लेकिन इसने एक बात का इकरार किया है, और इकरार के अंदर इंसान का मुआखजा होता है। मसलन एक आदमी कह दे कि मैंने जैद के 10 लाख रुपए अदा करने हैं, उसने खुद इकरार कर लिया है, तो जैद इसको काजी के पास ले जाकर इससे 10 लाख वसूल कर सकता है कि काजी साहब इसने खुद इकरार किया था। तो इकरार करने पर किसी आदमी का मुआखजा किया जा सकता है। तो दोनों शरीकों में से हर एक इकरार कर रहा है कि दूसरे ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया है, इसका मतलब है वो इकरार कर रहा है कि मैं अब अपने हिस्से को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। मैंने आपको बतलाया था कि जब एक गुलाम के कुछ हिस्से को आजाद कर दिया जाए तो इमाम साहब के नजदीक बाकी हिस्सा मुकातब के दर्जे में हो जाएगा। किसके दर्जे में? मुकातब, यानी भी पूरा वो आजाद तो नहीं हुआ, अलबत्त वो मुकातब के दर्जे में हो गया, जाएगा जाकर पैसे कमाकर लाएगा और दूसरे फरीक को अदा करके फिर ये आजाद हो जाएगा। तो इमाम साहब के नजदीक इताक की तजज्जी हो सकती है, लिहाजा जब दो शरीकों में से एक शरीक अपना हिस्सा आजाद कर दे तो दूसरे शरीक का हिस्सा मुकातब के दर्जे में हो जाता है। तो जब मसलन जैद और अमर में गुलाम मुश्तरका है, जैद कह रहा है कि अमर ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है, अगरचे अमर इसका इनकार कर रहा है लेकिन जैद ने तो इकरार कर लिया कि अमर ने अपना हिस्सा आजाद कर लिया है और इकरार की वजह से एक आदमी का मुआखजा हो सकता है। लिहाजा गोया जैद के कहने का मतलब यह है कि अब मैं इस गुलाम को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता क्योंकि इसका निसफ क्या हो चुका है, आजाद हो चुका है, तो मैं इसको गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। और फिर आपने पढ़ा था कि जब एक शख्स अपने हिस्से के गुलाम को आजाद कर दे तो दूसरे को इख्तियार होता है, वो गुलाम से सही करवा सकता है या अपने हिस्से को वैसे ही आजाद कर सकता है, और अगर मौतिक मालदार है तो ये उससे जमान भी ले सकता है। लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं यहां जमान भी नहीं लिया जा सकता दूसरे शरीक से, सिर्फ गुलाम से सही करवाई जा सकती है। दूसरे शरीक से जमान इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो तो इनकार कर रहा है, जैद ने कहा अमर ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है और अमर तो इनकार कर रहा है कि नहीं मैंने अपना हिस्सा आजाद नहीं किया, लिहाजा अमर से जमान नहीं लिया जा सकता चाहे वो मालदार ही क्यों ना हो भाई, लिहाजा गुलाम ही से सही करवाई जाएगी। तो गुलाम सही करेगा जैद के हिस्से की, और इसी तरह अमर का भी यही ख्याल है कि जैद ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है और जैद तो इसका इनकार कर रहा है, लिहाजा जैद चाहे मालदार ही क्यों ना हो अमर उससे जमान नहीं ले सकता, वो गुलाम ही से सही करवा सकता है। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि जब एक गुलाम के अंदर दो अफराद शरीक हैं और दोनों में से हर एक इकरार कर रहा है कि मेरे शरीक ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया है और हाल यह है कि दूसरा शरीक इसका इनकार कर रहा है, तो इस सूरत में फिर जमान नहीं लिया जा सकता चाहे मौतिक मालदार ही क्यों ना हो, तो फिर गुलाम ही से सही करवाना पड़ेगी। तो गुलाम दोनों के हिस्सों की सही करेगा, दोनों को अपने अपने हिस्से की कीमत अदा करेगा और आजाद हो जाएगा। अब इस गुलाम को गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता क्योंकि दोनों में से हर एक इकरार कर रहा है कि मैं इसको गुलाम बनाकर नहीं रख सकता क्योंकि दूसरे ने अपने हिस्से को आजाद करके मेरा हिस्सा भी खराब कर दिया है। तो इमाम साहब के नजदीक चाहे दोनों मौतिक मालदार हों, चाहे दोनों तंगदस्त हों, चाहे एक मालदार हो एक तंगदस्त हो, तमाम सूरतों में गुलाम को सही करना पड़ेगी अपनी आजादी के लिए। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं काला वलौ शहीद कुल्लु वाहिदिन मिन शरीकैन, ये काला से मुराद साहिब कुदूरी हैं। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वलौ शहीद कुल्लु वाहिदिन मिन शरीकैन अला साहिबिही बिल इत्की, और जब गवाही दी दो शरीकों में से हर एक ने अपने साथी के खिलाफ बिल इत्की आजादी की कि इसने अपने हिस्से को आजाद कर दिया है। गवाही से याद रखना मुराद है इकरार, दोनों में से हर एक क्या कर रहा है, इकरार कर रहा है कि मेरे शरीक ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया है। तो सअल अब्दु लिकुल्लि वाहिदिन मिन्हुम मा फी नसीबिही, तो गुलाम सही करेगा उन दोनों में से हर एक के लिए उसके हिस्से के अंदर और उस हिस्से की कीमत अदा करेगा। मुसिरैनी काना औ मुसिरैनी, चाहे वो दोनों शरीक मालदार हों औ मुसिरैनी या तंगदस्त हों, इंद अबी हनीफा रहमहुल्ला इमाम साहिब के नजदीक। वकदा इदा कान अहदुहुमा मुसिरन वल आखरु मुसिरा, और इसी तरह है मसला अगर दोनों में से एक मालदार हो और दूसरा तंगदस्त हो। मैंने बताया भाई अगर मौतिक मालदार हो तो उससे जमान लिया जा सकता है, लेकिन यहां तो वो दूसरा शरीक इनकार कर रहा है तो उससे जमान की लेने की कोई सूरत ही नहीं है। तो मौतिक मालदार ही क्यों ना हो फिर भी गुलाम से सही करवाना पड़ेगी, और अगर मौतिक तंगदस्त है फिर तो जमान लिया ही नहीं जा सकता, फिर तो गुलाम से सही ही करवाई जाती है भाई। तो कहते हैं वकदा इदा काना अहदुहुमा मोसिरं वल आखर मोसिरा, और इसी तरह अगर दोनों में से एक मालदार है और दूसरा तंग दस्त है, ले अन्न कुल्ल वाहिद मिन्हुमा यज़अमु अन्न साहिबहु अतक नसीबहु, ले अन्न कुल्ल वाहिद मिन्हुमा यज़अमु, इसलिए क्योंकि दोनों शरीकों में से हर एक ये गुमान कर रहा है कि अन्न साहिबहु अतक नसीबहु, कि उसके साथी ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया है। फसार मुकातबन फी ज़अमी ही, तो ये गुलाम मुकातब हो गया है उसके गुमान में। हर शरीक के गुमान में यह गुलाम किसके दर्जे में हो चुका? हर शरीक के गुमान के मुताबिक ये गुलाम मुकातब के दर्जे में हो चुका है। तो कहते हैं फसारा मुकातबन फीजामी ही, तो हर शरीक के गुमान में ये गुलाम मुकातब हो चुका है। इंदहू इमाम साहेब के नजदीक, क्योंकि इमाम साहेब के नजदीक इता की तजज्जी हो सकती है। अगर एक शरीक अपने हिस्से को आजाद करेगा तो दूसरे शरीक का हिस्सा मुकातब बन जाएगा। तो कहते हैं फसारा मुकातबन फीजामी ही इंदहू, तो ये गुलाम जो है मुकातब बन गया है हर शरीक के गुमान में। इंदहू इमाम साहेब के नजदीक। वहरुमा अलैहिल इस्तिरकाकु, और हराम हो गया है उस पर इसको गुलाम बनाकर रखना। हर एक का क्या गुमान है, दूसरे ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया है, अब मैं इसको गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। तो कहते हैं हर एक का यह गुमान है कि गुलाम जो है मुकातब हो चुका है। वहरुमा अलैहिल इस्तिरकाकु, और उस पर इसको गुलाम बनाकर रखना हराम हो चुका है। फयुसद्दकु फी हक नफ्सिही, तो दोनों शरीकों में से हर एक की तस्दीक की जाएगी अपनी जात के बारे में। हर एक शरीक खुद इकरार कर रहा है कि मेरा हिस्सा खराब हो चुका, अब मैं इसको गुलाम बनाकर नहीं रख सकता, तो उनकी अपनी जात के बारे में उनके इस गुमान की तस्दीक की जाएगी, यानी अब उनको इजाजत नहीं होगी कि वो गुलाम को इसी तरह गुलाम बनाकर रखें। तो कहते हैं फयुसद्दकु फी हक़ नफ्सिही, तो इन दोनों में शरीकों में से हर एक की तस्दीक की जाएगी उसकी जात के बारे में। फयुमनाउ, तो इनको मना किया जाएगा मिन इस्तिरकाकिही, उस गुलाम को गुलाम बनाकर रखने से। वयस्तसईही, और दोनों उससे सई करवा सकते हैं। गुलाम बनाकर रखने से दोनों को मना किया जाएगा कि तुम्हारा अपना गुमान है, अब तुम इसको गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। तुम कह रहे हो कि दूसरे ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया है, अगरचे वो इनकार कर रहा है लेकिन तुम तो इकरार कर रहे हो। तो कहते हैं फयुमनउ मिन इस्तिरकाकिही वयस्तसईही, तो उसको मना किया जाएगा उस गुलाम को गुलाम बनाकर रखने से। वयस्तसईही, और वो उससे सई करवाएंगे। लिअन्ना तयक्कन्ना बिहक्किल इस्तिसाई कादिबन काना औ सादिका, इधर देखिए भाई, दोनों में से हर एक का क्या गुमान है कि शरीक के आखिर ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया, उसने मेरा हिस्सा भी खराब कर दिया है, अब मैं इसको गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। और याद रखो, दोनों के लिए सई का हक तो साबित होगा। शरीक आखर से जमान तो नहीं ले सकता, चाहे वो मालदार ही क्यों ना हो, क्योंकि वो इनकार कर रहा है, लेकिन दोनों को सई करवाने का हक है। वजह यह कि हर एक इकरार कर रहा है, तो ये अपने इकरार में या तो सच्चा होगा या झूठा। जैद ने इकरार किया कि अमर ने अपना हिस्सा आजाद किया है, और अमर इकरार कर रहा है कि जैद ने अपना हिस्सा आजाद किया है, तो ये इस इकरार के अंदर या तो ये सच्चे हैं या झूठे। अगर सच्चे हैं तो फिर इस सूरत में ये गुलाम मुकातब के दर्जे में हो गया, और मुकातब से सई करवाई जाती है। वो शरीक आखर के लिए कमाई करता है और पैसे लाकर देता है, और फिर पूरा आजाद हो जाता है। और अगर ये झूठ बोल रहे हैं, शरीक आखर ने अपना हिस्सा आजाद नहीं किया, तो मालूम हुआ ये इसका हिस्सा अभी भी इसका ममलूक है। जब इसका अपना हिस्सा अभी भी इसका ममलूक है, तो ममलूक से तो सई करवाई जा सकती है। कोई भी शख्स अपने गुलाम से कामकाज करवा के पैसे कमा सकता है भाई। तो लिहाजा या तो ये दोनों शरीक सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। सच बोलें तो इनका हिस्सा मुकातब हो चुका, लिहाजा इन्हें सई करवाने का हक है इस गुलाम से। और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो भी इनका हिस्सा इनका ममलूक है, और अपने ममलूक से सई करवाना जायज है। मालूम हुआ इन्हें सई का हक तो हर हाल में यकीनी तौर पर हासिल है। दोनों शरीकों को सई करवाने का हक यकीनी तौर पर साबित है, क्योंकि इनका हिस्सा या तो मुकातब है अगर ये सच बोल रहे हैं, या इनका हिस्सा इनका ममलूक ही है अगर ये झूठ बोल रहे हैं। और चाहे मुकातब हो या ममलूक, दोनों से सई करवाई जा सकती है भाई। तो कहते हैं वयस्ता सई ही, और दोनों इस गुलाम से सई करवाएंगे। ली अन्ना तयक्कन्ना बिहक्किल इस्तिसाई, इसलिए क्योंकि हमने यकीन कर लिया बिहक्किल इस्तिसाई, सई के हक का, हमने यकीन कर लिया सई के हक का कि दोनों को सई का हक हासिल है। काजिबन काना औ सादिका, चाहे वो झूठा हो चाहे वो सच्चा हो। लिअन्नहु मुकातबुहु औ ममलूकुहु, इसलिए क्योंकि ये गुलाम अब उसका मुकातब है या ममलूक है। फलिहादा यस्ता सईयानी ही, तो लिहाजा ये दोनों उस गुलाम से सई करवा सकते हैं। वला यख्तलिफु ज़ालिका बिल यसारी वल इसारी, भाई इमाम साहेब के मजहब पर मसला बयान फरमा रहे हैं साहिब किताब भाई, और कहते हैं गुलाम से सई करवा सकते हैं दोनों, चाहे मुअतिक मालदार हो चाहे तंगदस्त हो। जैद का ख्याल है अमर ने अपना हिस्सा आजाद किया है, अमर चाहे मालदार ही क्यों ना हो फिर भी जैद सई करवा सकता है, और अमर का ख्याल है कि जैद ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है, जैद चाहे मालदार ही क्यों ना हो अमर फिर भी सई करवा सकता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इमाम साहब के नजदीक मुअतिक का मालदार होना सई से मानेअ नहीं है। साहिबैन का तो क्या मजहब था कि अगर मुअतिक मालदार हो तो सिर्फ जमान लिया जा सकता है, और अगर मुअतिक तंगदस्त हो तो सिर्फ गुलाम से सई करवाई जा सकती है, जबकि इमाम साहब के नजदीक मुअतिक मालदार ही क्यों ना हो फिर भी गुलाम से सई करवाई जा सकती है। तो लिहाजा इमाम साहब के नजदीक मुअतिक के मालदार और तंगदस्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सूरतों में गुलाम से सई करवाई जा सकती है। हां मुअतिक मालदार हो तो फिर जमान भी लिया जा सकता है इमाम साहब के नजदीक, लेकिन यहां तो मुअतिक जो है वो इनकार कर रहा है, जैद अमर के बारे में कहता है उसने अपना हिस्सा आजाद किया है, अमर चाहे मालदार ही क्यों ना हो लेकिन वो तो इनकार कर रहा है तो उसे जमान भी नहीं लिया जा सकता। और इसी तरह अमर का जैद के बारे में यह गुमान है कि जैद ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है, जैद चाहे मालदार ही क्यों ना हो फिर भी इसे जमान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जैद तो इनकार कर रहा है कि मैंने अपना हिस्सा आजाद नहीं किया। तो मालूम हुआ मुअतिक के मालदार और तंगदस्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सूरतों में गुलाम से सई करवाई जा सकती है भाई। तो कहते हैं वला यख्तलिफु ज़ालिका, और यह मुख्तलिफ नहीं होता बिल यसारी वल इसारी, मालदारी और तंगदस्ती से, यानी ये जो गुलाम से दोनों सई करवा रहे हैं इस पर मुअतिक की मालदारी या तंगदस्ती से कोई असर नहीं पड़ता, मसला इसी तरह रहेगा। मसला समझ में आ रहा है भाई? तो कहते हैं वला यख्तलिफु ज़ालिका बिल यसारी वल इसारी, तो ये मुअतिक की मालदारी और तंगदस्ती से ये बदलता नहीं है, यानी जो सई का हक हरे को हासिल है तो मुअतिक की मालदारी से या तंगदस्ती से यह बदलता नहीं, दोनों सूरतों में सई करवाई जा सकती है। ले अन्ना हक्कहु फिल हालैन फी अहदि शैइन, इसलिए क्योंकि आका का जो हक है फिल हालैन दोनों हालतों में, चाहे मुअतिक मालदार हो चाहे तंगदस्त हो, दोनों हालतों में जो आका का हक है फी अहदि शैइन, दो चीजों में से एक के अंदर है। भाई इधर देखिए, अगर मुअतिक मालदार हो तो दूसरा शरीक जमान भी ले सकता है और गुलाम से सई भी करवा सकता है, लेकिन होगी एक ही चीज उसके लिए, अगर वो सई करवाता है तो जमान नहीं ले सकता, और अगर जमान लेता है तो गुलाम से सई नहीं करवा सकता, और अगर मुअतिक तंगदस्त है तो फिर वो सिर्फ गुलाम से सई करवा सकता है, जमान नहीं ले सकता। मालूम हुआ मुअतिक चाहे मालदार हो चाहे तंगदस्त, दूसरे शरीक का हक एक ही चीज में बनेगा एक वक्त में, या सई में या जमान में, दोनों जमान भी ले ले और सई भी करवा ले ऐसा नहीं हो सकता, दोनों में से एक ही के अंदर उसका हक है भाई। तो कहते हैं लिअन्ना हक्कहु फिल हालैन फी अहदि शैइन, इसलिए क्योंकि उस आका का हक जो है दोनों हालतों में, यानी चाहे मुअतिक मालदार हो चाहे तंगदस्त हो, दोनों हालतों में उसका हक जो है फी अहदि शैइन, दो चीजों में से एक के अंदर है, या जमान ले या गुलाम से सई करवाए। लिअन्ना यसार अल मुअतिक ला यमनउ सियायत इंदहु, इसलिए क्योंकि मुअतिक की मालदारी ये मना नहीं करती सई को, इंदहु इमाम साहिब के नजदीक, साहिबैन के नजदीक मुअतिक मालदार हो तो सिर्फ उससे जमान लिया जा सकता है, गुलाम से सई नहीं करवाई जा सकती, लेकिन इमाम साहिब के नजदीक मौतिक, मौतिक मालदार ही क्यों ना हो, फिर भी गुलाम से सई करवाई जा सकती है। लेकिन दूसरे शरीक का हक एक ही चीज में होगा, अगर वो गुलाम से सई करवाना चाहता है तो जमान नहीं ले सकता, और अगर जमान लेना चाहता है तो सई नहीं करवा सकता। तो बहरहाल इमाम साहब के नजदीक मौतिक का मालदार होना सई से मान्या नहीं है। तो कहते हैं लिअन्ना यसार अल मुअतिकी ला यमनाउ सिआयत इंदहू, इसलिए क्योंकि मुअतिकी मालदारी वो सई को मना नहीं करती इंदहू इमाम साहिब के नजदीक। वक़द तअज़्ज़रा तज़मीनु लि इनकारी शरीक, और जामिन बनाना तो मुमकिन न रहा लि इनकारी शरीक, क्योंकि शरीक इनकार कर रहा है। जैद ने कहा अमर ने अपना हिस्सा आजाद किया है, लेकिन अमर तो इनकार कर रहा है, और अमर कहता है कि जैद ने अपना हिस्सा आजाद किया है, लेकिन जैद तो उसका इनकार कर रहा है, तो जमान नहीं लिया जा सकता, जमान नहीं लिया जा सकता चाहे मौतिक मालदार ही क्यों ना हो। तो कहते हैं वक़द तअज़्ज़रा तज़मीनु लि इनकारी शरीकी, और जामिन बनाना तो मुमकिन न रहा लि इनकारी शरीकी, उस शरीक के इनकार करने की वजह से। फतअय्यन अल आखरु, तो दूसरी चीज ही मुतअय्यन हो गई। वह सिआयत, और वो सई है, जब जमान नहीं लिया जा सकता तो सई ही करवाना पड़ेगी। वल वला उलहुमा, और वला दोनों के दरमियान मुश्तरका होगी। वला मैंने आपको बतलाया था कि वो माले मीरास जो मौतिक को मिलता है, वो माले मीरास है। और मैंने आपको बतलाया था कि मैयत के इंतकाल पर सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाता है, फिर उसके बाद बाकी माल में से कर्जे अदा किए जाते हैं, और फिर उसके बाद अगर उसने कोई वसीयत की है तो वो सुलू से माल तक वसीयत नाफिज की जाती है, और बाकी माल वारिसों का हक है। लेकिन वारिस तीन किस्म पर हैं भाई, कुछ जबील फुरूज हैं, कुछ असबाए नसबी हैं, और कुछ असबाए सबबी। सबसे पहले जबील फुरूज को माल देंगे, जो बाकी बचेगा फिर वो असबाए नसबी ले जाएंगे, और अगर असबाए नसबी कोई ना हो तो फिर इस सूरत में यह माल असबाए सबबी यानी मौतिक को मिलेगा। तो मौतिक को माले मीरास मिलता है अपने आजाद शुदा गुलाम या बांदी का, लेकिन तीसरे नंबर पर, पहले जबील फुरूज को देंगे, उसके बाद असबाए नसबी को, अगर असबाए नसबी कोई ना हुआ फिर उसके बाद मौतिक को यह माल मिलेगा, और इस माले मीरास को वला कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो इमाम साहब फरमाते हैं वल वला उलहुमा, के वला दोनों शरीकों के लिए होगी, वला दोनों शरीकों के लिए होगी, क्योंकि दोनों ने सई करवाई है गुलाम से और फिर गुलाम आजाद हुआ है। और मैंने आपको बतलाया था कि चाहे गुलाम को वैसे ही आजाद किया जाए फिर भी वला इस मौतिक को मिलती है, और चाहे वो इवज लेकर गुलाम को आजाद करे फिर भी वला इसी को मिलेगी, क्योंकि गुलाम तो आजादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इस आका की वजह से इसको आजादी मिली है, चाहे इसने माल ले लिया लेकिन इसकी वजह से गुलाम को आजादी जैसी नेमत तो मिल गई, लिहाजा वला का यह हकदार होगा। तो मालूम हुआ चाहे इताक बिला इवज हो चाहे बिल इवज हो, दोनों सूरतों में यह आका मौतिक है और यह वला का हकदार है। तो यहां पर जब दोनों आका जो हैं दोनों के लिए गुलाम सई करेगा तो दोनों क्या बन गए, मौतिक बन गए। जब दोनों मौतिक हैं तो वला दोनों को मिलेगी, लेकिन मिलेगी तीसरे ही नंबर पर, जबील फुरूज से माल बचा और असबाए नसबी कोई भी नहीं, फिर असबाए सबबी को माल मिलेगा। अगर असबाए नसबी कोई हुआ तो वो सारा माल ले जाता है भाई, तो असबाए नसबी कोई ना हो तो फिर असबाए सबबी को यानी तीसरे नंबर पर असबाए सबबी आएगा यानी मौतिक, इसको सारा माल मिलेगा। तो ये वला इन दोनों को मिलेगी क्योंकि दोनों मौतिक हैं। ये किसके नजदीक है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्ला के नजदीक। तो कहते हैं वल वला उलहुमा, और वला दोनों शरीकों के लिए होगी। ले अनकुल मिन हुमा यकूलू, इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर एक ये कह रहा है भाई। इधर देखिए वला दोनों को मिलेगी, वजह यह कि जैद इकरार कर रहा है कि अमर ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है। मालूम हुआ जैद इकरार कर रहा है कि अमर अपने हिस्से का मौतिक है, लिहाजा वला का हकदार वो है, लिहाजा उस हिस्से की वला का हकदार वो है, और जैद अपने हिस्से की गुलाम से सई करवाएगा तो इस हिस्से की वला का हकदार जैद हो जाएगा। इसी तरह अमर की तरफ से देख लें, अमर इकरार कर रहा है कि जैद ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है, अगरचे जैद इनकार कर रहा है लेकिन अमर इकरार कर रहा है, गोया अमर इस बात का इकरार कर रहा है कि जैद मुअतिक है अपने हिस्से का, लिहाजा उस हिस्से की वला का हकदार भी जैद ही है, और मैं अपने हिस्से में चूंकि सही करवाऊंगा तो अपने हिस्से का मुअतिक मैं बन गया तो उसकी वला मुझे मिलेगी। तो दोनों शरीकों में से हर एक इस बात का इकरार कर रहा है कि निस्वे वला शरीके आखर की है और निस्वे वला मेरी है। भाई तो कहते हैं लिअन्न कुल्लम मिन्हुमा यकूलु, इसलिए क्योंकि इन दोनों शरीकों में से हर एक ये कह रहा है आतका नसीबु साहिबी अलैही, कि मेरे साथी का हिस्सा उस पर आजाद हो गया है बिइताकी ही, उसके आजाद कर देने की वजह से, वला उहू लहू, और उसके हिस्से की वला उसी के लिए है। उसने अपने हिस्से को आजाद किया है तो उसके हिस्से की वला उसी के लिए है। ये दोनों में से हर एक इकरार कर रहा है। वअतका नसीबी बिसआयती, और मेरा हिस्सा सई की वजह से आजाद हुआ है, वला उहुली, और मेरे हिस्से की वला मेरे लिए है। ये था इमाम साहिब का मजहब। भाई तो इमाम साहिब के नजदीक जब दोनों शरीकों में से हर एक इकरार कर रहा है कि दूसरे ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया है और दूसरा शरीक इसका इनकार कर रहा है, तो फिर इस सूरत में जमान नहीं लिया जा सकता और सिर्फ गुलाम से सई करवाई जा सकती है, चाहे दोनों मालदार हों, चाहे दोनों तंगदस्त हों, और चाहे दोनों में से एक मालदार हो और एक तंगदस्त हो। तमाम सूरतों का यही हुक्म है, और वला जो है दोनों शरीकों के दरमियान तकसीम होगी, दोनों उसके हकदार हैं। भाई अब साहिबैन का मजहब आया। भाई साहिबैन के नजदीक आप जानते हैं कि अगर मुअतिक मालदार हो तो फिर गुलाम से सई नहीं करवाई जा सकती, सिर्फ मुअतिक से जमान लिया जा सकता है, और अगर मुअतिक तंगदस्त है तो फिर उससे जमान नहीं लिया जा सकता, सिर्फ गुलाम से सई करवाई जा सकती है। तो अब देखिए साहिबैन का मसब बयान करेंगे साहिब हिदाया। आगे साहिबैन फरमाते हैं अगर दोनों मालदार हैं तो इस सूरत में गुलाम से सई नहीं करवा सकता। जैद भी मालदार है, अमर भी मालदार है, तो जब जैद ने कहा कि अमर ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है तो गोया जैद इकरार कर रहा है कि ये मुअतिक मालदार है, मैं इसे जमान ले सकता हूं और मैं गुलाम से सई नहीं करवा सकता, क्योंकि जब मुअतिक मालदार हो तो गुलाम से सई नहीं करवाई जा सकती साहिबैन के मजहब के मुताबिक। तवज्जो है जी। तो साहिबैन के मजहब के मुताबिक मुअतिक जब मालदार हो तो गुलाम से सई नहीं करवाई जा सकती, तो जब जैद भी मालदार है, अमर भी मालदार है, अब मसलन पहले जैद की तरफ से देखें, जैद इकरार कर रहा है अमर ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है और अमर क्या है मालदार, मालूम हुआ जैद दावा कर रहा है कि मुझे अमर से जमान दिलाया जाए क्योंकि मैं गुलाम से सई नहीं करवा सकता, लेकिन जमान भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि अमर उसका इनकार कर रहा है कि मैंने तो अपना हिस्सा आजाद नहीं किया, तो जमान भी नहीं ले सकते क्योंकि वो शरीक आखिर इनकार कर रहा है, और गुलाम से सई भी नहीं करवा सकते क्योंकि शरीक आखिर तो मालदार है और मौतिक मालदार हो तो फिर गुलाम से सई नहीं करवाई जा सकती। और इसी तरह अमर की तरफ से देख लें, अमर कह रहा है कि जैद ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है और जैद मालदार है, तो गोया अमर दावा कर रहा है कि मुझे जैद से जमान दिलाया जाए, मैं गुलाम से सई नहीं करवा सकता क्योंकि मुअतिक तो मालदार है, लेकिन वो मुअतिक तो इनकार कर रहा है तो उससे जमान भी नहीं लिया जा सकता और गुलाम से सई भी नहीं करवाई जा सकती। तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ व मोहम्मद रहिमहुमल्लाह ताला, और साहिबैन फरमाते हैं इनका नाम मुसिरैनी, कि अगर ये दोनों शरीक मालदार हैं फला से आयत अलैही तो गुलाम पर सई नहीं है, लिअन्न कुल्ल वाहिद मिन्हुमा, इसलिए क्योंकि दोनों शरीकों में से हर एक जो है ये तबर्रउ अन सिआयतिही, वो बरी उस जिम्मा हो रहा है अन सिआयति ही गुलाम की सई से कि गुलाम पर सई नहीं है, बिदाव जमानी आला साहिबी ही अपने साथी पर जमान का दावा करते हुए। जब जैद ने क्या कहा कि अमर ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है, यानी अमर मौतिक है और मौतिक तो मालदार है, तो मालूम हुआ जैद दावा कर रहा है कि मुझे अमर से जमान दिलाया जाए, मैं गुलाम से सईद नहीं करवा सकता। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिअन्ना कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा यतबर्रउ अन सिआयतिही, इसलिए क्योंकि इन दोनों शरीकों में से हर एक जो है वो बरी हो रहा है गुलाम की सई से, या यूं कहो वो बराअत का इजहार कर रहा है गुलाम की सई से, बिदावा जमानी अला साहिबिही, अपने साथी पर जमान का दावा करने की वजह से। जब मौतिक को मालदार है तो गोया वो उस पर जमान का दावा कर रहा है और गुलाम को सई से बरी कर रहा है भाई। لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما, इसलिए क्योंकि मौतिक की मालदारी वो सई को मना करती है साहिबैन के नजदीक। इल्ला अन्न दावा लम तस्बुत, मगर यह कि इनका यह दावा भी साबित नहीं हुआ। लिइनकार आखरी, क्योंकि दूसरा तो इस इताक का इनकार कर रहा है भाई, तो उसे जमान भी नहीं लिया जा सकता। वल बराअत अन السعاية قد تثبت, अलबत्त गुलाम की सई से बराअत जो है, गुलाम का सई से बरी होना, कद तस्बुतु, वो साबित हो गई, लि इकरार ही आला नफसी ही, खुद अपने ऊपर इकरार करने की वजह से। जब मौतिक मालदार है और वो फिर भी कह रहा है उसने उस गुलाम को आजाद किया है, तो गोया वो इकरार कर रहा है कि मैं गुलाम से सई नहीं करवा सकता, तो गुलाम बरी हो जाएगा सई से। बात समझ में आ गई। तो इस सूरत में गुलाम वैसे ही आजाद हो जाएगा जब दोनों मालदार हैं भाई, और अगर यही मसला पेश आया और दोनों तंगदस्त हैं, जब दोनों तंगदस्त हों तो फिर मौतिक से तो जमान नहीं लिया जा सकता, फिर गुलाम से सई करवाई जा सकती है। तो इस सूरत में फिर दोनों के लिए गुलाम सई करेगा, और अगर दोनों में से एक मालदार है और एक तंगदस्त है तो फिर मालदार के लिए तो गुलाम सई करेगा, तंगदस्त के लिए सई नहीं करेगा। क्यों? मालदार के लिए क्यों सई करेगा? मसलन जैद मालदार है और अमर तंगदस्त है, तो जैद ने जब इकरार कर लिया कि अमर ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है और अमर तो है तंगदस्त, मौतिक तंगदस्त है, मालूम हुआ जैद का यह दावा है कि मेरा हक सिर्फ गुलाम से सई करवाना है, मैं अमर से जमान नहीं ले सकता क्योंकि अमर तो तंगदस्त है, जब मौतिक तंगदस्त हो तो उससे जमान नहीं लिया जा सकता। बात समझ में आ रही है? जैद मालदार है और अमर तंगदस्त है, तो जब जैद ने यह दावा किया कि अमर ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है, तो गोया जैद यह दावा कर रहा है कि मैं अमर से जमान नहीं ले सकता, मेरा हक सिर्फ गुलाम की सई में है, तो गुलाम इसके लिए सई करेगा, गुलाम इसके लिए सई करेगा। और जबकि जब अमर वो तंगदस्त है और जैद क्या है, मालदार है, अमर ने दावा किया कि जैद ने अपना हिस्सा आजाद कर दिया है, तो गोया अमर का यह दावा है कि चूंकि मौतिक मालदार है तो मैं उससे जमान तो ले सकता हूं, गुलाम से सई नहीं, लिहाजा इस तंगदस्त के लिए गुलाम सई नहीं करेगा क्योंकि इसने अपने इकरार के जरिए खुद उस गुलाम को सई से बरी कर दिया है। तो मालदार के लिए गुलाम सई करेगा और तंगदस्त के लिए सई नहीं करेगा। यह वो सूरत है जब दोनों में से, दोनों शरीकों में से एक मालदार हो और एक तंगदस्त हो, तो गुलाम मालदार के लिए सई करेगा और तंगदस्त के लिए सई नहीं करेगा। तो कहते हैं वह इनका नाम मौसिरैनी, और अगर ये दोनों शरीक तंगदस्त हैं, सआ लहुमा, तो गुलाम दोनों के लिए सई करेगा। लिअन्न कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा यद्दई सिआयता अलैही, इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर एक जो है वो गुलाम पर सई का दावा कर रहा है। दोनों शरीक तंगदस्त हैं तो तंगदस्त पर तो जमान नहीं आता बल्कि गुलाम से सई करवाई जाती है, तो गोया दोनों गुलाम पर सई का दावा कर रहे हैं, तो गुलाम दोनों के लिए सई करेगा भाई। तो कहते हैं लिअन्न कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा यद्दई सिआयता अलैही, इसलिए क्योंकि दोनों शरीकों में से हर एक गुलाम पर सई का दावा कर रहा है, सादिकन कान औ काज़िबा, चाहे वो अपने इकरार में सच्चा हो चाहे झूठा हो भाई, अला मा बैन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दी पीछे भाई। इमाम साहेब की जहां दलील आई थी वहां जिक्र किया था कि जमान तो नहीं लिया जा सकता क्योंकि शरीक आखर इनकार कर रहा है, अलबत्ता गुलाम से सई करवाई जा सकती है। पीछे इबारत आई थी लिअन्ना तयक्कन्ना बिहक़ इल इस्तिसाई, कि हमने यकीन कर लिया कि दोनों को सही का हक हासिल है, क्योंकि अगर ये सच बोल रहे हैं तो इनका हिस्सा मुकातब हो चुका है और मुकातब से सही करवाई जाती है, और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो मालूम इनका हिस्सा अभी भी इनका ममलूक है, गुलाम ही है, और अपने गुलाम से भी सही करवाई जा सकती है। तो चाहे सच बोलें चाहे झूठ बोलें, ये गुलाम या तो मुकातब है या ममलूक है, और मुकातब से भी सही करवाई जा सकती है और ममलूक से भी। तो इसी की तरफ इशारा है। अलबत्ता साहिबैन के नजदीक तो एताक की तजज्जी नहीं हो सकती। अगर कुछ हिस्से को आजाद करेगा तो सारा गुलाम ही आजाद हो जाएगा, गुलाम ही आजाद हो जाएगा, और यह ऐसा आजाद है जिसके ऊपर देन है, दूसरे के हिस्सा देन हो गया। साहिबैन के नजदीक एक गुलाम में दो आदमी शरीक हैं, एक ने अपना हिस्सा आजाद किया तो सारा ही गुलाम आजाद हो गया, अलबत्ता अब दूसरे शरीक का हिस्सा जो है वो गुलाम पर देन है। तो ये अब गुलाम जो है ये अब ऐसा आजाद आदमी हो चुका है जिसके ऊपर देन है, अब इसको काम काज करके वो देन उतारना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो साहिबैन की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं अगर दोनों तंगदस्त हैं तो फिर गुलाम से सही करवा सकते हैं, क्योंकि इन्हें सही का हक हासिल है, चाहे ये सच बोल रहे हैं चाहे झूठ बोल रहे हैं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो ये गुलाम इनका ममलूक है और अपने ममलूक से सही करवाई जा सकती है, उससे कामकाज करवाया जा सकता है, मजदूरी करवाई जा सकती है, अपने गुलाम के जरिए पैसे कमाए जा सकते हैं। और अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर इस सूरत में यह गुलाम आजाद हो चुका है, यह इस वक्त एक आजाद आदमी है, अलबत्ता इस पर इस शरीक के हिस्से की जो कीमत थी वो अब इस आजाद आदमी पर देन है और उसकी अदायगी के लिए इस आजाद आदमी को अब सही करना पड़ेगी। तो बहरहाल सही का हक दोनों सूरतों में है, चाहे दोनों सच बोल रहे हैं चाहे झूठ बोल रहे हैं, सही का हक है तो सही करवाई जाएगी। ये माना है अलामा बयन्नाह, उस वजह से जो हमने बयान कर दी कि हमने यकीन कर लिया कि दोनों को सही का हक हासिल है। इमाम साहब के मजहब के मुताबिक सही का हक क्यों हासिल है, क्योंकि यह हिस्सा या तो मुकातब है या ममलूक है, और साहिबैन के नजदीक भी दोनों को सही का हक हासिल है जी। किस वजह से कि यह हिस्सा या तो इसका ममलूक है या ऐसा आजाद है जिसके ऊपर देन है। साहिबैन के नजदीक हिस्सा मुकातब नहीं बनेगा, वो इमाम साहब के नजदीक एक हिस्सा मुकातब था। साहिबैन के नजदीक अगर झूठ बोल रहा है तो इसका हिस्सा अभी भी ममलूक है, और अगर सच बोल रहा है तो इसका हिस्सा आजाद हो चुका है और इसके ऊपर देन है। बात समझ में आ गई तो वो कोशिश करेगा, नहीं तवज्जो सबक की तरफ। फिर सुनो भाई, देखो ये जो पीछे आया ना, इमाम साहब के मजहब के मुताबिक अगर एक शरीक अपना हिस्सा आजाद करे तो दूसरा हिस्सा मुकातब के दर्जे में हो जाता है, जबकि साहिबैन के नजदीक एक शरीक अपना हिस्सा आजाद करे तो सारा गुलाम ही आजाद हो जाता है, अलबत्ता इसके ऊपर देन आ जाता है। तो पीछे आया था क्योंकि हमने यकीन कर लिया ये दोनों को सही का हक है। क्यों सही का हक है, क्योंकि यह शख्स इकरार कर रहा है कि दूसरे ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया है, तो या तो यह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अगर यह सच बोल रहा है तो इसका हिस्सा मुकातब हो चुका जी। दूसरे ने वाकई आजाद किया है तो इसका हिस्सा मुकातब हो गया और मुकातब से सही करवाई जाती है, और अगर यह झूठ बोल रहा है तो यह अभी भी इसका ममलूक है, लिहाजा फिर भी सही करवा सकता है। और साहिबैन के मजहब के मुताबिक दोनों में से हर एक इकरार कर रहा है कि मेरे शरीक ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया है, अगर वो सच बोल रहा है तो फिर यह गुलाम अब ऐसा आजाद आदमी बन चुका है जिसके ऊपर देन है, तो ये सही करके अदा करेगा देन को। और अगर इकरार के अंदर यह झूठ बोल रहा है, दूसरे शरीक ने तो अपना हिस्सा आजाद नहीं किया, तो भी गुलाम फिर इसका ममलूक ही है और ममलूक से भी सही करवाई जा सकती है भाई। तो कहते हैं अलामा बयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि हमने यकीन कर लिया कि दोनों को सही करवाने का हक है। इदिल मुअतिकु मुअसिरुन, क्योंकि आजाद करने वाला तंगदस्त है, और जब आजाद करने वाला तंगदस्त हो तो गुलाम से सही करवाई जाती है। वह इनका ना अहद हुआ मुसिरम वल आखर मुअसिरन, और अगर दोनों में से एक मालदार है और दूसरा तंगदस्त है, साल इल मोसरी मिन हुमा, तो गुलाम सही करेगा उस आका के लिए जो इन दोनों में से खुशहाल है। लियान्नहु ला यदाई जमान अला साहिबिही, इसलिए भाई इधर फिर देखिए, फिर वही बात जो मैंने पहले बयान कर दी, अगर दोनों में से एक मालदार है एक तंगदस्त है, तो गुलाम मालदार के लिए सही करेगा, तंगदस्त के लिए सही नहीं। भाई क्यों? कहते हैं वजह यह कि मालदार ने जब कहा है कि दूसरे ने अपना हिस्सा आजाद किया है और वो तंगदस्त है, तो गोया वो इकरार कर रहा है कि मैं दूसरे शरीक से जमान नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो तंगदस्त है, मैं सिर्फ गुलाम से सही करवा सकता हूं, तो लिहाजा गुलाम इस मालदार के लिए सही करेगा। और जब तंगदस्त ने यह दावा किया कि मालदार ने अपना हिस्सा आजाद किया है, तो गोया ये तंगदस्त ये दावा कर रहा है कि ये मौतिक मालदार है, मुझे जमान दिलाया जाए, मैं तो गुलाम से सही नहीं करवा सकता, क्योंकि मौतिक जब मालदार हो तो गुलाम से सही नहीं करवाई जा सकती, तो लिहाजा हर एक से उसके गुमान के मुताबिक सुलूक किया जाएगा। यहां पर तो वो शरीक जो खुशहाल है, मालदार है, उसके लिए तो गुलाम सही करेगा, और जो तंगदस्त है उसके लिए सही नहीं करेगा। तो कहते हैं वह इनकान अहद हुमा मुसिरन वल आखर मुआसिरन, और अगर दोनों शरीकों में से एक मालदार है और दूसरा तंगदस्त है, सआलिल मुसिर मिन हुमा, तो इन दोनों में से जो मालदार है उसके लिए गुलाम सही करेगा। लिया नहु ला यदई जमान आला साहिब ही, इसलिए क्योंकि ये मालदार जो है अपने साथी पर जमान का दावा नहीं कर रहा, लि आसार ही उसकी तंगदस्ती की वजह से, वही नमायत दई आल ही से आया था, और वो तो सिर्फ इस गुलाम पर सही का दावा कर रहा है, मालदार गुलाम पर सिर्फ सही का दावा कर रहा है। फला यतबर्रउ अन्हु, लिहाजा गुलाम जो है वो इस सही से बरी उस जिम्मा नहीं होगा, गुलाम को सही करना पड़ेगी इस मालदार के लिए। वला यसअल मुअसिर मिन्हुमा, लेकिन गुलाम जो है वो तंगदस्त के लिए सही नहीं करेगा। लिअन्नहु यदअई ज़मान अला साहिबिही, इसलिए क्योंकि तंगदस्त जो है वो अपने साथी पर जमान का दावा कर रहा है, लियसअरिही उसकी मालदारी की वजह से। मौतिक जब मालदार हो तो सिर्फ जमान लिया जा सकता है साहिबैन के नजदीक, तो वो सिर्फ जमान का दावा कर रहा है अपने साथी पर उसकी मालदारी की वजह से। फयकून मुबर अन लिल अब्द अन सियायती, तो ये तंगदस्त जो है गुलाम को बरी उस जिम्मा कर रहा है सई से कि मेरा हक सई में है ही नहीं, मैं तो सिर्फ इस मालदार से जमान ले सकता हूं। बात समझ में आ गई, तो लिहाजा इसके लिए गुलाम सही भी नहीं करेगा, क्योंकि इस तंगदस्त ने खुद इस गुलाम को सही से बरी कर दिया। वल वला उ मौकूफ उनफी जमी इजालिका आइंदा हुमा, भाई इमाम साहिब की बात तो ऊपर गुजर गई, उनके नजदीक इस गुलाम की वला दोनों के दरमियान मुश्तरक होगी, दोनों जो आका हैं, दोनों जो शरीक हैं, दोनों वला के हकदार हैं, निस्फे वला एक को मिलेगी और निस्फे वला दूसरे को, लेकिन साहिबैन के नजदीक ये जो वला है ये मौकूफ रहेगी, किसी को भी नहीं दी जाएगी, यहां तक कि दोनों किसी एक पर इत्तेफाक कर लें कि इसने गुलाम को आजाद किया था जी। जैद और अमर दोनों किसी एक पर मुत्तफिक हो जाएं, दोनों कहें कि मसलन इस जैद ने गुलाम को आजाद किया था, या दोनों कहें कि ये अमर ने गुलाम को आजाद किया था, तो फिर उसको वला मिलेगी, वरना वला को मौकूफ रखा जाएगा। भाई क्या वजह? वजह यह कि साहिबैन के नजदीक एताक की तकसीम नहीं हो सकती जी। तो जब एक ने आजाद किया तो पूरा गुलाम ही आजाद हो गया, लिहाजा दोनों में से एक वला का मुस्तहिक है, दोनों वला के मुस्तहिक नहीं, और जो एक वला का मुस्तहिक है उसकी यहां तायीन ही नहीं हो रही, क्योंकि दोनों आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं, तवज्जो है जी। तो लिहाजा वला किसी एक को भी नहीं मिलेगी, बल्कि वला को मौकूफ रखा जाएगा, रोक कर रखा जाएगा, यहां तक कि दोनों किसी एक पर मुत्तफिक हो जाएं कि इसने आजाद किया है, और अगर किसी एक पर इत्तेफाक दोनों ने नहीं किया तो फिर इस सूरत में वला जो है वो बैतुल माल में जमा करवा दी जाएगी। वजह समझ में आई? क्योंकि साहिबैन के नजदीक एताक की तकसीम नहीं, लिहाजा जिसने भी अपने हिस्से को आजाद किया है सारा गुलाम उसी की तरफ से आजाद हो गया, जब सारा गुलाम उसकी तरफ से आजाद हो गया है तो वही वला का हकदार है, लेकिन उसका तो पता नहीं चल रहा जी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वल वला उ मौकूफ उन फी जमी इजालिका आइंदा हुमा, और वला मौकूफ रहेगी इन तमाम सूरतों में, आइंदा हुमा साहिबैन के नजदीक, तमाम सूरतों में, चाहे दोनों शरीक मालदार हों, चाहे दोनों तंगदस्त हों, चाहे एक मालदार हो और एक तंगदस्त हो, तमाम सूरतों में। तो कहते हैं वल वला उम मौकूफ़ फी जमी ज़ालिका इंदहुमा, और इस सब के अंदर वला को मौकूफ रखा जाएगा साहिबैन के नजदीक। लिअन्न कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा युहीलुहु अला साहिबिही, अहाला युहीलु का माने हवाले करना। लिअन्न कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा, इसलिए क्योंकि दोनों शरीकों में से हर एक युहीलुहु वो इस वला को हवाले कर रहा है अला साहिबिही अपने साथी पर। ज़ैद का गुमान है कि अमर ने अपने हिस्से को आजाद किया है, तो जब अमर ने अपने हिस्से को आजाद किया तो सारा गुलाम आजाद हो गया, तो वला का मुस्तहिक कौन? अमर। तो ज़ैद का गुमान यह है कि सारी वला का मुस्तहिक अमर है, और अमर का ख्याल है कि ज़ैद ने अपने हिस्से को आजाद किया है, और इताक में तो तजजी नहीं, लिहाजा ज़ैद ने जब अपने हिस्से को आजाद किया तो सारा गुलाम आजाद हो गया, और जब सारा गुलाम आजाद हो गया तो मौतिक तो ज़ैद हो गया। जब ज़ैद मौतिक है तो सारी वला का मुस्तहिक ज़ैद है, तो अमर इकरार कर रहा है सारी वला ज़ैद को मिलनी चाहिए, और ज़ैद इकरार कर रहा है कि सारी वला अमर को मिलनी चाहिए, तो तायीन नहीं हो सकती कि कौन वला का मुस्तहिक है, लिहाजा वला को रोक कर रखा जाएगा। ये माना है लिअन्न कुल्ल वाहिद मिन्हुमा युहीलुहु अला साहिबिही, इसलिए क्योंकि दोनों शरीकों में से हर एक जो है वला को हवाले कर रहा है अला साहिबिही अपने साथी पर। वह हुआ यतबर्रउ अन्हु, इस हाल में कि उसका साथी जो है वो इस वला से बराअत का इजहार कर रहा है। ज़ैद का क्या ख्याल है, वला किसको मिलनी चाहिए? अमर को, क्योंकि उसने आजाद किया है, लेकिन अमर इनकार कर रहा है, और अमर का गुमान है कि ज़ैद ने अपना हिस्सा आजाद किया है, लिहाजा सारी वला ज़ैद को मिलनी चाहिए, लेकिन ज़ैद इसका इनकार कर रहा है, लिहाजा फैसला ही नहीं हो सकता कि वला किसको दी जाए। तो ये माना है, फिर तर्जमा देख लीजिए, लिअन्न कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा युहीलुहु अला साहिबिही, इसलिए क्योंकि दोनों में से हर एक जो है वला हवाले कर रहा है अपने साथी पर। वह हुआ यतबर्रउ अन्हु, और हाल यह है कि उसका वो साथी जो है वो वला से बराअत का इजहार कर रहा है। फयबका मौकूफन, तो ये वला मौकूफ होकर बाकी रहेगी। इला अय्यत तफिका अला इताके अहदिहिमा, यहां तक कि दोनों शरीक इत्तेफाक कर लें किसी एक के इताक पर, तो फिर उसको वला मिल जाएगी, वरना वला बैतुल माल में जमा करवा दी जाएगी। बात समझ में आ गई? हासिल कलाम फिर समझ लीजिए, दो शरीकों के दरमियान एक गुलाम मुश्तरका है, दोनों में से हर एक इकरार करता है कि मेरे शरीक ने अपने हिस्से को आजाद कर दिया है, लिहाजा अब मैं अपने हिस्से को भी गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। और हाल यह है कि दूसरा शरीक जो है वो इस बात का इनकार कर रहा है, वो कहता है मैंने अपना हिस्सा आजाद नहीं किया, तो इमाम साहिब के नजदीक गुलाम दोनों के लिए सही करेगा और दोनों के हिस्से की कीमत अदा करके आजाद हो जाएगा, चाहे दोनों शरीक मालदार हों, चाहे तंगदस्त हों, और चाहे एक मालदार हो और एक तंगदस्त हो। और यहां पर जमान भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि शरीक आखिर उसका इनकार कर रहा है, वो इताक का इनकार कर रहा है, लिहाजा उसे जमान भी नहीं लिया जा सकता, और वला दोनों के दरमियान तकसीम होगी। ये इमाम साहिब के नजदीक है, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि अगर दोनों शरीक मालदार हैं तो फिर गुलाम पर सही है ही नहीं, गुलाम वैसे ही आजाद हो जाएगा, और अगर दोनों शरीक तंगदस्त हैं तो फिर गुलाम दोनों के लिए सही करेगा और फिर आजाद हो जाएगा, और अगर दोनों में से एक मालदार है और एक तंगदस्त है तो मालदार के लिए गुलाम सही करेगा और तंगदस्त के लिए गुलाम सही नहीं करेगा, और इस सूरत में वला को मौकूफ रखा जाएगा जब तक दोनों किसी एक पर इत्तेफाक न कर लें, और अगर दोनों ने किसी एक पर भी इत्तेफाक न किया तो फिर वला बैतुल माल में जमा करवा दी जाएगी। बात समझ में आ गई? अब आगे देखिए, वलौ काला अहदु शरीकैन इल्लम यदखुल फुलानुन हादिहि दार गदन फहुवा हुर्रुन وقال الآخر إن دخل فهو حر فمضى الغد ولا يدرى دخل أم لا عتق النصف وسعى لهما في النصف وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله تعالى يسعى في جميع قيمته। सूरत मसला ये, एक गुलाम दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका है भाई, और उन दोनों में से एक ने गुलाम की आजादी को एक शर्त के साथ मुअल्लक किया, एक चीज के होने के साथ मुअल्लक किया, और दूसरे ने अपने हिस्से की आजादी को उसी शर्त के न होने के साथ मुअल्लक कर दिया और फिर बाद में अब मालूम नहीं कि वो शर्त पाई गई है या शर्त नहीं पाई गई। तो शेखैन रहिमहुमल्ला फरमाते हैं गुलाम अपनी निस्फ कीमत के अंदर सही करेगा, और इमाम मोहम्मद रहमल्ला फरमाते हैं गुलाम अपनी सारी कीमत के अंदर सही करेगा। मसलन जैद और अमर के दरमियान एक गुलाम मुश्तरका है। जैद ने कहा कि अगर खालिद कल इस घर के अंदर गया तो मेरे हिस्से का गुलाम आजाद है। एक गुलाम है जैद और अमर में मुश्तरका है। जैद ने अपने हिस्से की आजादी को मुअल्लक कर दिया खालिद के एक खास घर के अंदर जाने के साथ कि अगर कल के दिन में खालिद इस घर के अंदर गया तो मेरे हिस्से का गुलाम आजाद है। जबकि अमर जो दूसरा शरीक है उसने इसी शर्त के न होने पर अपने हिस्से को मुअल्लक कर दिया। अमर कहता है कि अगर खालिद कल उस घर के अंदर न गया तो मेरा हिस्सा आजाद है। अब कल का दिन गुजर गया लेकिन यह पता ना चल सका कि खालिद उस घर में गया था या नहीं गया था। अगर यह पता चल जाए कि खालिद कल उस घर में गया था तो फिर तो जैद का हिस्सा आजाद हो जाएगा क्योंकि जैद की शर्त पूरी हो गई। और अगर यह पता चल जाए कि खालिद कल उस घर के अंदर नहीं गया था फिर तो अमर की शर्त पूरी हो गई तो अमर का हिस्सा आजाद हो जाएगा। लेकिन यहां यह पता ही नहीं चल सकता कि जैद की शर्त पूरी हुई है या अमर की शर्त पूरी हुई है। तो इस सूरत में शेखैन रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि गुलाम निस्फ कीमत में सही करेगा क्योंकि निसफ गुलाम का आजाद होना तो यकीनी है। जाहिर सी बात है गुज़श्ता कल के अंदर दो चीजों में से एक तो जरूर हुई है, या खालिद उस घर में गया है या नहीं गया, तीसरी तो कोई सूरत ही नहीं है। तो निसफ गुलाम तो यकीनी तौर पर आजाद है, लिहाजा गुलाम का निसफ तो आजाद हो गया और निसफ के अंदर गुलाम सई करेगा, वो पैसे कमाकर लाएगा और फिर पूरा आजाद हो जाएगा। ये शेखैन रहिमहुमल्ला के नजदीक है। जबकि इमाम मोहम्मद रहमल्ला फरमाते हैं कि गुलाम अपनी पूरी कीमत में सही करेगा, सारी कीमत लाकर देगा और फिर गुलाम आजाद हो जाएगा। सूरत समझ में आ गई भाई? देखिए अगर तो शर्त का पता चल जाता है तो फिर जिसकी शर्त पूरी हो गई उसके हिस्से का गुलाम आजाद हो गया, उसके हिस्से का गुलाम आजाद हो जाएगा और वो मुअतिक बन जाएगा और दूसरे शरीक को फिर इख्तियार होगा कि वो अपने हिस्से को चाहे तो वैसे ही आजाद कर दे और चाहे तो गुलाम से सही करवा ले, और अगर ये मुअतिक मालदार है तो चाहे इससे जमान ले ले। तो अगर शर्त का पता चल सके कि किसकी शर्त पूरी हुई है फिर तो मसला आसान है। लेकिन यहां सूरत यह है कि शर्त का पता ही नहीं चल रहा कि किसकी शर्त पूरी हुई है। अलबत्ता दोनों में से एक की शर्त पूरी होना तो यकीनी है, किसी एक की शर्त यकीनन पूरी हुई है क्योंकि दोनों ने एक ही चीज के होने और न होने की शर्त लगाई थी। बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं वलौ काला अहदु शरीकैन, और अगर दो शरीकों में से एक ने कहा इल्लम यदखुल फुलानुन हादिही दारा गदन कि अगर फुला इस घर के अंदर कल दाखिल न हुआ फहुआ हुर्रुन तो वो आजाद है, यानी उसके हिस्से का गुलाम आजाद है। वकाल अल आखरु, और दूसरे ने कहा इन दखल फहुआ हुर्रुन अगर फुला कल इस घर में दाखिल हुआ तो फिर ये गुलाम आजाद है भाई। फमजल गदु, तो कल का दिन गुजर गया वला युदरा दखला अमला और यह बात मालूम नहीं है कि फुला उस घर में दाखिल हुआ था या दाखिल नहीं हुआ। तो कहते हैं अतकन निसफु, तो निसफ गुलाम आजाद हो जाएगा। वसा लहुमा फिन निसफी, और गुलाम सही करेगा दोनों के लिए अपने निसफ में। वसा लहुमा फिन निसफी, गुलाम दोनों के लिए सही करेगा यानी निसफ कीमत कमाकर लाएगा और उस निसफ को दोनों में तकसीम करके देगा। गुलाम अपनी निसफ कीमत कमाएगा और इस निसफ का निसफ एक को देगा और निसफ दूसरे को देगा। यह माना है वसा लहू माफिन निसफी, और गुलाम दोनों के लिए सही करेगा अपनी निसफ कीमत में। वहादा इंदा अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह, और ये शेखैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक है। वकाल मोहम्मद रहिमहुल्लाह यसाफी जमी कीमती ही, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि गुलाम अपनी सारी कीमत में सही करेगा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं गुलाम अपनी सारी कीमत में सही करेगा, सारी कीमत कमा कर लाएगा और निसफ एक को दे देगा और निसफ दूसरे को दे देगा और गुलाम आजाद हो जाएगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि गुलाम अपनी सारी कीमत में सही करेगा और सारी कीमत कमा कर लाएगा और निसफ एक शरीक को देगा और निसफ दूसरे शरीक को देगा। भाई अब उसकी वजह क्या है, तो आगे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील जिक्र फरमा रहे हैं साहिब हिदाया। भाई देखिए पहले दो तीन चीजें समझ लीजिए। मकजीयुन, मकजीयुन कजा यकजी से इसमें मफूल है। मकजीयुन जिसका फैसला किया जाए, फैसला करने वाला काजी, कजा यकजी कजा अनफहुआ काजिन व खुजी युकजा कजा अनफदा का मकजीयुन, तो मकजीयुन इसमें मफूल है जिसका फैसला किया जाए। अब याद रखो जब काजी फैसला करता है तो जो फैसला किया वो है मकजीयुन बिही, जो काजी ने फैसला किया वो क्या है मकजीयुन बिही, जिस चीज के साथ फैसला किया गया यानी जो फैसला किया गया, और जिसके खिलाफ काजी फैसला करे उसको कहते हैं मकजीयुन अलैही। देखो अला जरर और नुकसान के लिए आता है, मकजीयुन अलैही जिसके खिलाफ फैसला किया गया, और एक है मकजीयुन लहू लाम नफे के लिए आता है, मकजीयुन लहू जिसके लिए फैसला किया गया, जिसके हक में फैसला किया गया। बात समझ में आ गई, तो मकजीयुन अलैही किसे कहते हैं जिसके खिलाफ फैसला किया जाए, मकजीयुन लहू किसे कहते हैं जिसके हक में फैसला किया गया, और मकजीयुन बिही किसे कहते हैं जो फैसला किया गया। तो यहां पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील जिक्र फरमा रहे हैं साहिब हिदाया। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर गुलाम की आजादी को दोनों ने मुअल्लक किया था, लेकिन एक ने उसी शर्त के होने पर और एक ने उस शर्त के न होने पर, तो और दोनों में से एक चीज जरूर पाई गई है, कल खालिद उस घर में गया था या नहीं गया था, दोनों में से एक चीज तो हो चुकी है जी। तो एक का हिस्सा आजाद हो चुका है, और जिसका हिस्सा आजाद हो चुका है वो गुलाम से सही नहीं करवा सकता जी। वो गुलाम से सही नहीं करवा सकता क्योंकि उसका हिस्से की सही साकित हो गई है। लेकिन यहां पर किसके हिस्से की सही साकित हुई है उसका पता ही नहीं चल सकता, तो काजी किसके खिलाफ फैसला करे, काजी तवज्जो है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील चल रही है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं दोनों ने अपने हिस्से के गुलाम की आजादी को मुअल्लक किया था एक ही शर्त के साथ, एक ही चीज के साथ, अलबत्ता एक ने उसके होने पर आजादी को मुअल्लक किया था और दूसरे ने उसके न होने पर, तो लिहाजा दोनों में से एक चीज तो जरूर पाई गई। मालूम हुआ एक का हिस्सा आजाद हो चुका है और दूसरे के लिए वो सही करेगा गुलाम, लेकिन किसके हिस्से की सही साकित हुई है ये यहां पता ही नहीं चल सकता। तो मालूम हुआ जिसके हिस्से की सही साकित हुई है वो यहां मजहूल है, यानी यूं कहो मकजीयुन अलै जिसके खिलाफ फैसला होगा, मकजीयुन अलै किस चीज का फैसला होगा कि उसके हिस्से की सही साकित हो चुकी है, तो वो मकजीयुन अलै जिसके हिस्से की सही साकित हो चुकी है वो यहां मजहूल है, वो यहां मजहूल है, लिहाजा एक के खिलाफ भी फैसला नहीं किया जा सकता कि इसके हिस्से की सही साकित हुई है। जब एक के खिलाफ भी सही के साकित होने का फैसला नहीं किया जा सकता तो गुलाम को पूरी कीमत के अंदर सही करना पड़ेगी। तवज्जो है, फिर समझें, फिर समझें, दोनों में से एक का हिस्सा आजाद हो चुका, जिसका हिस्सा आजाद हो चुका वो गुलाम से सही नहीं करवा सकता, लेकिन वो कौन है कि जिसके हिस्से की सही साकित हुई है वो मजहूल है, तो वो शख्स जिसके खिलाफ फैसला किया जाएगा उसके हिस्से की सही साकित होने का वो मजहूल हो गया। जी। पता नहीं जैद के हिस्से की सही साकित हुई है या अमर के, तो वो मकजीयुन अलैह, वो शख्स जिसके खिलाफ फैसला किया जाएगा कि उसके हिस्से की सही साकित हो चुकी है वो यहां मजहूल हो गया, पता नहीं चल रहा वो जैद है वो मकजीयुन अलैह जिसकी सही साकित हुई है या वो अमर है जिसकी सही साकित हुई है। तो मकजीयुन अलैह बिसुकूत इससे आया वो मजहूल है।
जी।
कौन मकजीयुन अलैह बिसुकूत इससे आया, वो जिसके खिलाफ सही के साकित होने का फैसला किया जाएगा वो मजहूल हो गया। जब मजहूल हो गया तो एक के खिलाफ भी फैसला नहीं किया जा सकता, जब एक के खिलाफ भी सही के साकित होने का फैसला नहीं किया जा सकता तो फिर उसको दोनों के लिए सही करना पड़ेगी, क्योंकि एक के हिस्से की भी सही साकित होने का फैसला नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मजहूल है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिअन्न अल-मक्ज़िया अलैहि बिसुकूत इस्सआयति मजहूलुन, इसलिए क्योंकि वो शख्स के जिसके खिलाफ फैसला किया जाएगा सही के साकित होने का मजहूलुन, वो मजहूल है। वला युमकिनुल क़ज़ाउ अलल मजहूली, और मजहूल शख्स के खिलाफ तो फैसला करना मुमकिन नहीं है। फसारा कमा इदा क़ाला लिग़ैरिही, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे किसी ने दूसरे से कहा। भाई दो आदमियों ने जैद से कहा, दो आदमी खड़े हैं उन्होंने जैद से कहा कि ए जैद तुम्हारा 1000 दिरहम मुझ पर है या इस साथ वाले आदमी पर है। दो आदमियों ने क्या कहा जैद से कि तुम्हारा 1000 दिरहम या मेरे जिम्मे है या इसके जिम्मे है। तो इस सूरत के अंदर भी काजी किसी एक पर भी 1000 दिरहम वाजिब नहीं कर सकता क्योंकि यहां भी मकजीयुन अलैह मजहूल है, जिसके खिलाफ फैसला किया जाएगा जिस पर 1000 दिरहम लाजिम किए जाएंगे वो मजहूल हो गया, और जब मकजीयुन अलैह मजहूल हो तो काजी फैसला नहीं कर सकता। तो कहते हैं फसार कमा इदा काला ली गैरी ही, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये इसी तरह हो गया जब किसी ने दूसरे से कहा लका अला अहदिना अल्फ दिरहमीन, कि आपका हम दोनों में से एक पर 1000 दिरहम है। फइन्नहु ला युक्ज़ा बिशैइन, तो यहां पर किसी भी चीज का फैसला नहीं किया जा सकता। लिल जहालती, जहालत की वजह से कि मकजीयुन अलैह मजहूल है। तो कहते हैं कज़ा हाजा, इसी तरह यहां पर भी है, जैसे वहां उन दोनों में से किसी एक के खिलाफ भी काजी 1000 दिरहम के वाजिब होने का फैसला नहीं कर सकता क्योंकि मकजीयुन अलैह मजहूल है, यहां पर भी किसके हिस्से की सही साकित हुई है तो यहां पर भी मकजीयुन अलैह मजहूल है, किसी एक के खिलाफ भी काजी फैसला नहीं कर सकता कि उसके हिस्से की सही साकित हो गई है। और जब किसी एक के हिस्से की भी सही के साकित होने का फैसला नहीं किया जा सकता तो फिर जाहिर सी बात है दोनों के हिस्से के अंदर उसको सही करना पड़ेगी गुलाम को। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, कहते हैं वलहुमा, और शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील यह है कि अन्ना तयक्कन्ना बिसुकूति निस्फ से आयती, कि हमने यकीन कर लिया निस्फ सही के साकित होने का। भाई इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तो फरमाते हैं कि सुकूत सही का फैसला नहीं किया जा सकता, लिहाजा दोनों के लिए गुलाम को सही करना पड़ेगी, जबकि शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, गुलाम निस्फ कीमत में सही करेगा। कहते हैं इसलिए क्योंकि दोनों में से एक शर्त का पाया जाना तो यकीनी तौर पर है, या तो खालिद कल उस घर में गया होगा या नहीं गया होगा, दोनों में से एक चीज तो यकीनी है। जब दोनों में से एक यकीनी है तो मालूम गुलाम का निसफ आजाद हो चुका है। गुलाम का निसफ, जब गुलाम का निसफ आजाद हो चुका है तो फिर गुलाम पर कैसे उसकी पूरी कीमत वाजिब की जा सकती है। गुलाम पर तो निस्फ कीमत ही वाजिब की जा सकती है, निस्फ कीमत में वो सही करेगा, पूरी कीमत उस पर वाजिब नहीं की जा सकती। इसमें तो गुलाम बेचारे का हक बातिल हो रहा है भाई, उसको पूरी कीमत कमा कर लाना पड़ेगी, ये तो आपने उस बेचारे को बिला वजह तकलीफ में डाल दिया। हालांकि निसफ गुलाम का आजाद होना तो यकीनी है क्योंकि दोनों में से एक शर्त तो जरूर पूरी हो चुकी है भाई। तो कहते हैं वलहुमा और शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील यह है कि अन्ना तयक्कन्ना बिसुकूति निस्फ से आयति, कि हमने यकीन कर लिया निस्फ सही के साकित होने का, लिअन्ना अहदहुमा हानिसुम बि यकीनिन, क्योंकि दोनों शरीकों में से एक तो यकीनी तौर पर हानिस है यानी उसकी शर्त पूरी हो चुकी है। वह मातयक्कुनी बिसुकूतिन निस्फी, और निस्फ कीमत के साकित होने का यकीन होने के बावजूद
जी।
यकीन होने के कहते हैं वह मातयक्कुनी बिसुकूतिन निस्फी, और निस्फ कीमत के साकित होने के यकीन होने के बावजूद कैफ युक्ज़ा बिवुजूबिल कुल्ली, कैसे फैसला किया जा सकता है कुल कीमत के वाजिब होने का कि गुलाम सारी कीमत में सही करेगा। निसफ का आजाद होना तो यकीनी है, तो फिर गुलाम के खिलाफ कैसे फैसला किया जा सकता है कि उसे सारी कीमत कमा कर लाना पड़ेगी। बात समझ में आगे, फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वह मातयक्कुनी बिसुकूतिन निस्फी कैफ युक्ज़ा बिवुजूबिल कुल्ली, और गुलाम की निस्फ कीमत के साकित होने का जब यकीन है तो फिर गुलाम के खिलाफ पूरी कीमत के वाजिब होने का फैसला कैसे किया जा सकता है, और नीस इसके अंदर गुलाम बिचारे का हक भी बातिल होगा। निसफ तो उसका आजाद हो चुका है, लेकिन आप फिर भी फैसला कर रहे हैं कि उस निसफ में भी उसको सही करना पड़ेगी भाई। वल जहालतु तरतफियो बिशुयूई व तौज़ीअ, वल जहालतु तरतफियो, और ये जहालत जो है ये तो उठ जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिशुयूई व तौज़ीअ। याद रखो शुयूअ का माना है शुयूअ, शाया यशीउ शुयूअन, शाये होना, फैला हुआ होना, यानी मुश्तरका होना, मुश्तरका। तो शुयूअ का क्या माना है, मुश्तरका होना यानी गैर मुनकसिम होना। व तौज़ीअ, तौज़ीअ का माना भी समझ लें, वज़अ युवज़िउ तौज़ीअन, ज़ा के साथ है भाई। तौज़ीअ का माना है तकसीम करना, तो शुयूअ का माना मुश्तरका होना यानी जिसमें तकसीम ना हो, और तौज़ीअ का माना तकसीम करना। तो लिहाजा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह को जवाब जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया शेखैन रहमहुमल्लाह की तरफ से। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे कि यहां एक के हिस्से की सही साकित हो गई है, लेकिन किसके हिस्से की सही साकित हुई है वो मजहूल है, किसके खिलाफ फैसला किया जाए। तवज्जो है, तो मालूम हुआ मकज़ियुन अलैही वो मजहूल है। तो शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर इस जहालत को दूर किया जा सकता है वो इस तरह कि गुलाम का निसफ तो यकीनी तौर पर आजाद हुआ है, वो निसफ दोनों के दरमियान उसको मुश्तरका करार दे दिया जाए
जी।
भाई निसफ गुलाम है जैद का, निसफ गुलाम है अमर का, तो इस गुलाम का निसफ तो आजाद हो चुका है
जी।
और किसका निसफ आजाद हुआ है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते थे कि पता नहीं चल सकता, तो हम उस जहालत को यूं दूर करेंगे कि जो निसफ गुलाम आजाद हुआ है वो जैद और अमर में मुश्तरका करार दे देते हैं। हम ये भी नहीं कहते जैद का हिस्सा आजाद हुआ है, हम ये भी नहीं कहते अमर का हिस्सा आजाद हुआ है, बल्कि जो हिस्सा आजाद हुआ है वो दोनों में मुश्तरका उसको करार दे दिया जाए। मालूम हुआ जैद जिस निसफ का मालिक था उस निसफ में से निसफ आजाद हो गया है, और अमर जिस निसफ का मालिक था उसमें से भी निसफ आजाद हो गया है
जी।
तो गुलाम का वो हिस्सा जो आजाद हुआ है वो दोनों के दरमियान मुश्तरका करार दे दिया जाए। तो अब देखो मकज़ियुन अलैही मालूम हो गया
जी।
मकज़ियुन अलैही मालूम हो गया, वो अकेला जैद भी नहीं और अकेला अमर भी नहीं, बल्कि दोनों हैं भाई। तवज्जो है, जब दोनों का ही हिस्सा थोड़ा थोड़ा आजाद हुआ है तो मकज़ियुन अलैह मालूम हो गया, दोनों मकज़ियुन अलैह हैं। बात समझ में आ गई, तो मालूम हुआ निस्फ़ गुलाम आजाद हुआ, और ये जो निसफ आजाद हुआ है ये ना जैद का हिस्सा है ना अमर का, ये दोनों के दरमियान मुश्तरक है, और निस्फ़ हिस्से में गुलाम को सही करना पड़ेगी, और ये भी दोनों का मुश्तरका होगा। तो जो निसफ कीमत लेकर आएगा वो आधी किसको देगा, जैद को, और आधी किसको देगा, अमर। तो मालूम हुआ एताक में भी हमने तकसीम कर दी
जी।
तो ज़िया का क्या माना तकसीम, ये यूं कहो एताक में भी शिरकत थी, इताक, वो जो आधा हिस्सा आजाद हुआ उसमें दोनों शरीक हैं, और फिर हमने उसमें तकसीम कर दी, वो जो आधा हिस्सा है उसका निसफ जैद की तरफ से आजाद और निसफ अमर, और सही के अंदर भी हमने सही भी जो है उसको भी हमने मुश्तरका करार दे दिया और फिर उसकी तकसीम कर दी। वो जो निसफ हिस्से में सही करेगा वो दोनों की मुश्तरका है, और फिर हमने उसमें तकसीम कर दी कि वो जो निस्व कीमत लाएगा अपनी वो आधी जैद को देगा और आधी अमर को। तो कहते हैं वल जहालत तरतफियो बिशुयूई, और जहालत जो है वो उठ जाएगी बिशुयूई शुयू के जरिए कि उसको मुश्तरका करार दिया जाए दोनों में, व तौजीई और तकसीम के जरिए फिर उसको तकसीम किया जाए। जो गुलाम का निसफ हिस्सा आजाद हुआ वो दोनों की तरफ से आजाद हुआ, ये मुश्तरका है, और फिर इसको क्या कर दिया जाए दोनों में तकसीम कर दिया जाए। ये जो आधा हिस्सा आजाद हुआ है ये आधा किसकी तरफ से, जैद यानी रुब गुलाम जैद की तरफ से आजाद हुआ है और रुब गुलाम अमर की तरफ से आजाद हुआ है, और फिर अपने निसफ हिस्से के पैसे वो कमा कर लाएगा
जी।
तो वो निसफ भी दोनों में तकसीम होगा, यानी गुलाम अपनी रुबो कीमत जैद को अदा करेगा और अपनी रुबो कीमत अमर को अदा करेगा। तो ये माना है वल जहालत तरतफियो भी शुयू व तौजीई, और ये जहालत उठ जाएगी शुयू के जरिए यानी मुश्तरका करार देते हुए, व तौजीई और तकसीम के जरिए। बात समझ में आ गई। तो जहालत उठ गई, अब मकजी आले मालूम हो गए कि सुकूत से आया, एक से सुकूत से आया है या दोनों के हिस्सों में सुकूत से आया है। देखो निसफ गुलाम जैद का है, निसफ अमर का है
जी।
और निसफ आजाद हुआ है, अब उसका पता नहीं चल सकता ये जैद वाला आजाद हुआ है या अमर वाला। तो वो जो निसफ गुलाम आजाद हुआ है ये मुश्तरका है दोनों की तरफ से, और जब मुश्तरका है इसको तकसीम कर देंगे तो निसफ गुलाम जो आजाद हुआ है उस निसफ का निसफ जैद की तरफ से आजाद हुआ है और निसफ का निसफ अमर की तरफ से आजाद हुआ है, तो हमने तकसीम कर दी। जब दोनों की तरफ से निसफ निसफ आजाद हुआ है तो इन दोनों से निसफ निसफ सही साकित हो गई, तो मकजी आले मालूम हो गए, जहालत उठ गई, सही साकित हुई है गुलाम पर से निसफ के अंदर, लेकिन उस निसफ के अंदर जहालत आ रही थी किसके खिलाफ फैसला किया जाए। अब वो फैसला मुमकिन हो गया कि ये जो निसफ सही गुलाम से साकित हुई है ये निसफ अमर की तरफ से है और निसफ जैद की तरफ से सही साकित हुई है, और जिस निसफ में वो कोशिश करेगा और सही करेगा वो भी निसफ निसफ होगा दोनों के दरमियान। सूरत समझ में आ गई। तो जहालत क्या हुई, सुकूते से आया के अंदर जो मकजी आले मजहूल था वो जहालत खत्म हो गई। भाई कहते हैं वल जहालत तरतफियो बिशुयूई व तौजीई, और जहालत जो है वो उठ जाएगी बिशुयूई शुयू के जरिए मुश्तरका करार देने से, व तौजीई और तकसीम करने से। कमा इदा आतका अहदा अबदैही ला बिआइनिही औ बिआइनिही व नसियहू व मा तकबलत तदक्कुरी अविल बयान। शेखैन रहिमहुमल्ला की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि ये इसी तरह है जैसे एक आदमी अपने दो गुलामों में से गैर मुअय्यन को आजाद करे कि तुम दोनों में से एक आजाद है, तायीन नहीं की। एक शख्स के दो गुलाम हैं और उसने कहा तुम दोनों में से एक आजाद है
जी।
अब हमें बयान चाहिए भाई, उसे पूछा जाएगा कि बताओ दोनों में से किसका इरादा किया है तुमने
जी।
लेकिन वो बताने से पहले, बयान से पहले ही वो आदमी मर गया, तो फिर इस सूरत में वो जो पूरा गुलाम आजाद हो रहा था ये दोनों गुलामों में उसको तकसीम कर देंगे, यानी निसफ एक गुलाम आजाद शुमार करेंगे और निसफ दूसरा आजाद शुमार करेंगे, और दोनों गुलाम अपनी निसफे निसफे कीमत में सही करेंगे और कमा कर लाकर अदा करेंगे वारिसों को
जी।
तवज्जो है
जी।
तो कहते हैं जैसे यहां पर एक आदमी ने कहा अपने दो गुलामों से कि तुम दोनों में से एक आजाद है, उसके लिए बयान चाहिए था लेकिन बयान से पहले ही वो आदमी मर गया, तो जैसे इस इत्क को दोनों के दरमियान मुश्तरकत करार दिया गया और फिर दोनों में क्या कर दिया गया, तकसीम कर दिया गया और आधा आधा हिस्सा दोनों का आजाद हुआ, यहां पर भी इसी तरह है। या दूसरी सूरत है, एक आदमी ने अपने दो गुलामों में से एक मुअय्यन को आजाद कर दिया
जी।
लेकिन बाद में वो भूल गया कि मैंने इन दोनों में से किसको आजाद किया था, और याद आने से पहले ही उसका इंतकाल हो गया, याद आने से पहले ही इंतकाल हो गया। आप दोनों में से उसने एक को आजाद किया था, और वो एक कौन सा आजाद है पता नहीं चल रहा, तो दोनों के दरमियान इस आजादी को मुश्तरका करार दे दिया जाएगा और फिर दोनों में इसको तकसीम कर दिया जाएगा। तो निसफ एक गुलाम का आजाद हो जाएगा और निसफ दूसरे गुलाम का, और बाकी निसफ के अंदर दोनों सही करेंगे और वारिसों को लाकर देंगे। भाई बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी इसी तरह है भाई। तो कहते हैं कमा इदा आता का आहदा अबदई ही, ये इसी तरह है जब किसी ने अपने दो गुलामों में से एक को आजाद किया, ला बी आईनी ही गैर मुआयन, जब किसी ने अपने दो गुलामों में से एक गैर मुआयन को आजाद किया। कैसे? कि तुम दोनों में से एक आजाद है, तायीन नहीं की। तो देखो इसने दोनों में से एक गैर मुआयन को आजाद किया है, और इसके लिए क्या चाहिए? बयान चाहिए किसको आजाद किया है, इसे पूछा जाएगा, लेकिन बयान से पहले ही ये मर गया
जी।
तो अब दोनों के निसफ निसफ को आजाद करार दिया जाएगा और दोनों गुलाम अपनी निसफ निसफ कीमत में सही करेंगे। तो कहते हैं कमा इदा आतका अहदा अब्दैही ला बिआइनिही, ये इसी तरह है जैसे कि कोई शख्स अपने दो गुलामों में से किसी एक गैर मुआयन को आजाद करे, और बिआइनिही या दो गुलामों में से एक मुआयन को आजाद करे, व नसियाहू और भूल जाए, व मा तकबलत तज़क्कुरी और वो मर गया याद आने से पहले, अविल बयान या बयान से पहले, याद आने से पहले वो मर जाए, इसका ताल्लुक ये दूसरी सूरत से है। एक आदमी ने अपने दो गुलामों में से एक मुआयन को आजाद किया लेकिन फिर भूल गया, तो याद आने से पहले वो मर गया, माता कबल तज़क्कुरी, याद आने से पहले वो मर गया। और आगे है अविल बयानी, इस बयान का ताल्लुक वो पिछली सूरत से है, वो गैर मुआयन को आजाद करने वाली सूरत। एक आदमी ने अपने दो गुलामों में से एक गैर मुआयन को आजाद किया कि तुम दोनों में से एक आजाद है, अब इसके लिए क्या चाहिए? बयान, लेकिन बयान से पहले ही वो मर गया। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वह मा तकबल तज़क्कुरी अविल बयानी, और वो याद आने से पहले या बयान करने से पहले वो मर गया, तो दोनों गुलाम का निसफ निसफ आजाद होगा और निसफ के अंदर दोनों सही करेंगे। आगे देखिए कहते हैं वयता तफरी उफी अला अन्नल यसार हल यम नाउसियात अवला यम नाउहा अल इख्तिलाफी सबका वयता तफरी उबी। साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि यहां पर तो हमने मुख्तसर मसला जिक्र कर दिया, फिर सुनो मसला क्या जिक्र हुआ, एक गुलाम दो आदमी में मुश्तरका है, दोनों ने एक ही चीज के साथ दोनों ने इनकी आजादी को मुअल्लक किया, लेकिन एक शख्स ने उस चीज के होने पर आजादी को मुअल्लक किया और दूसरे ने उस चीज के न होने पर आजादी को मुअल्लक किया, और फिर बाद में पता नहीं चल रहा कि किसकी शर्त पूरी हुई है। तो शेखैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं निसफ गुलाम वैसे ही आजाद और निसफ में वो सही करेगा और वो दोनों को लाकर अदा करेगा वो निसफ, और जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो अपनी पूरी कीमत में सही करेगा। तो याद रखो आपने पढ़ा है इमाम साहेब के नजदीक मुअतिक मालदार ही क्यों ना हो फिर भी गुलाम से सही करवाई जा सकती है, शरीक आखर क्या कर सकता है, गुलाम से सही भी करवा सकता है और मुअतिक मालदार है तो उसे जमान भी ले सकता है। अगर मौतिक तंगदस्त है फिर तो सही ही करवाई जाएगी, फिर तो जमान नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर मौतिक मालदार है तो जमान भी लिया जा सकता है और गुलाम से सही भी करवाई जा सकती है। जबकि साहिबैन का मजहब क्या है कि अगर मौतिक मालदार है तो फिर गुलाम से सही नहीं करवाई जा सकती, फिर मौतिक से जमान ही लिया जाएगा, और अगर मौतिक तंगदस्त है तो फिर सिर्फ गुलाम से सही करवाई जा सकती है। तो यहां तो इन्होंने यह तफसील बयान नहीं की मतन में, और आगे साहिब हिदाया ने तफसील बयान नहीं फरमाई, तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि इसी पर और तफरीअ भी होती है, यानी और सूरतें भी निकलेंगी कि उन दोनों शरीकों को देखा जाएगा कि दोनों मालदार हैं या दोनों तंगदस्त हैं, या एक मालदार है और एक तंगदस्त है, तो उसके मुताबिक जैसे इस जाब्ते और कानून में इख्तिलाफ है उसी के मुताबिक मसले की सूरत बना ली जाएगी, अगर दोनों मालदार हैं, अगर दोनों मालदार हैं फिर तो गुलाम से सही नहीं करवाई जा सकती। तो बच्चो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक तो मसला फिर भी उसी तरह रहेगा, शेखैन एक तरफ थे ना
जी।
लेकिन अगर दोनों मालदार हैं फिर शेखैन में भी आपस में इख्तिलाफ आ जाएगा, दोनों शरीक मालदार हैं तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक मसला फिर भी उसी तरह है, क्योंकि मौतिक मालदार हो फिर भी गुलाम से सही करवाई जा सकती है। लेकिन इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक तो मौतिक जब मालदार हो तो गुलाम से सही नहीं करवाई जा सकती, तो फिर उनके नजदीक गुलाम से सही नहीं करवाई जाएगी, गुलाम वैसे ही आजाद हो जाएगा। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक भी अगर मौतिक मालदार हो तो गुलाम से सही नहीं, और अगर मौतिक तंगदस्त हो तो गुलाम से सही। तो लिहाजा जिस तरह उस जाब्ते के अंदर इख्तिलाफ है उस पर और तफरी भी इसी मसले में हासिल होगी उन जाब्तों के मुताबिक भी। तो कहते हैं वयता तफरी उफी ही, और इस मसले के अंदर तफरी हासिल होती है अला इस बात पर कि अनल यसार हल यमनाउ सियायत अवला यमनाउहा, कि मालदारी जो है वो सियाया को मना करती है या मना नहीं करती। अलल इख्तिलाफ लदी सबका, उसी इख्तिलाफ पर जो माकबल में गुजर गया
जी।
वही सूरतें फिर यहां मजीद बन जाएंगी, बात समझ में आ गई
जी।
वलौ हलफा अला अबदैनी कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा लिअहदिहिमा लम यातिक वाहिदुम मिन्हुमा, भाई गुज़श्ता मसले के अंदर दो आदमियों में एक मुश्तरका गुलाम था और दोनों ने अपने अपने हिस्से के गुलाम की आजादी को मुअल्लक किया था एक ही चीज के साथ, अलबत्ता एक ने उस चीज के होने के साथ आजादी को मुअल्लक किया था और दूसरे ने उस चीज के न होने के साथ आजादी को मुअल्लक किया था, और बाद में शर्त का पता नहीं चल रहा। लेकिन अब सूरत यह है दो आदमी हैं, दोनों का अपना अपना अलग गुलाम है, जैद का अपना गुलाम है, अमर का अपना गुलाम है। जैद कहता है कि अगर खालिद कल इस घर में गया तो मेरा गुलाम आजाद है। जैद ने अपने गुलाम की बात की है, यह जैद का अपना गुलाम है, यहां इश्तराक नहीं है। और अमर ने अपने गुलाम के बारे में कहा कि अगर कल खालिद उस घर में न गया तो मेरा गुलाम आजाद है
जी।
और फिर अगला दिन गुजर गया और पता नहीं चल रहा कि वो शर्त पाई गई है या नहीं पाई गई। तो इस सूरत में दोनों गुलामों में से एक भी आजाद नहीं होगा
जी।
एक की भी आजादी का काजी फैसला नहीं कर सकता, हालांकि दोनों चीजों में से एक का होना यकीनी है, या तो खालिद उस घर में गया है या नहीं गया। अगर गया है तो जैद की शर्त पूरी, लिहाजा जैद का गुलाम आजाद होना चाहिए, और अगर नहीं गया तो अमर की शर्त पूरी, लिहाजा अमर का गुलाम आजाद होना चाहिए। लेकिन कहते हैं नहीं, यहां फैसला नहीं किया जा सकता। वजह यह कि यहां पर मकजियन अलै भी मजहूल है और मकजियन लहू भी मजहूल है, मकजियन अलै भी मजहूल है, मकजियन लहू भी मजहूल है। तो यहां पर मकजियुन लहू भी मजहूल है और मकजियुन आले भी। किस तरह? देखो भाई, अगर हम जैद के गुलाम की आजादी का फैसला करें कि जैद का गुलाम आजाद हो गया, तो मकजियुन लहू कौन हुआ? यह गुलाम जिसके हक में फैसला हुआ है, जैद का जो गुलाम है, और जैद कौन हुआ? मकजियुन आले। तवज्जो है। और अगर हम अमर के गुलाम की आजादी का फैसला करें तो मकजियुन लहू अमर का गुलाम हुआ, और किसके खिलाफ फैसला हो गया? अमर के खिलाफ। तो मकजियुन अलै कौन हुआ? अमर हुआ। आका के खिलाफ फैसला होगा गुलाम की आजादी का, तवज्जो है। तो जिस गुलाम की आजादी का फैसला किया जाएगा वो होगा मकजियुन लहू, और जिस आका के गुलाम की आजादी का फैसला किया गया है वो आका क्या हुआ? मकजियुन अलै ही। तो यहां मकजियुन अलै भी मजहूल है, किसके गुलाम की आजादी का फैसला करें, जैद के या अमर के? मजहूल है। और किस गुलाम की आजादी का फैसला करें, यानी कौन सा मकजियुन लहू है, वो भी मजहूल है। तो मकजियुन अले भी मजहूल और मकजियुन लहू भी मजहूल। तो लिहाजा जहालत बहुत ज्यादा बढ़ गई, जहालत बहुत ज्यादा बढ़ गई, लिहाजा यहां कोई फैसला नहीं किया जा सकता। जबकि पिछले मसले में, पिछले मसले में जब दोनों का मुश्तरका गुलाम था, जब दोनों का मुश्तरका गुलाम था, वहां निसफ गुलाम की आजादी का फैसला किया गया था कि निसफ गुलाम आजाद है और निसफ में क्या करेगा? सही। तो निसफ गुलाम की आजादी का फैसला किया गया, तो यह गुलाम क्या है? मकजियुन लहू है। तो वहां देखो मकजियुन लहू मालूम था, एक ही गुलाम था, उसी के निसफ की आजादी का फैसला करना था, तो वह मकजियुन लहू है वह गुलाम, उसके हक में फैसला किया जा रहा है, तो वहां मकजियुन लहू मालूम था
जी।
और मकजियुन अले मजहूल था, लेकिन हमने वहां शुयू पर अमल किया, किसका हिस्सा आजाद है यह पता नहीं चल रहा था, तो वह जो आजाद हिस्सा है वह हमने मुश्तरका करार दे दिया
जी।
तो मकजियुन अले भी क्या हो गया? मालूम हो गया। जैद और अमर दोनों के खिलाफ फैसला है, किसी एक के खिलाफ फैसला नहीं। तो वहां मकजियुन लहू पहले से ही मालूम था, एक ही गुलाम था, उसी के निसफ ने आजाद होना था। अलबत्ता मकजियुन अले मजहूल था, लेकिन वहां हमने शुयू और तौजी पर अमल किया, तो मकजियुन अले भी मालूम हो गया। लेकिन यहां पर इस मसले के अंदर जैद का अपना गुलाम है, अमर का अपना गुलाम है। अगर हम जैद के गुलाम की आजादी का फैसला करें तो यह जैद का जो गुलाम है यह मकजियुन लहू बनेगा और जैद क्या बनेगा? मकजियुन अले ही। और अगर हम अमर के गुलाम की आजादी का फैसला करें तो अमर का गुलाम मकजियुन लहू बनेगा और अमर क्या बनेगा? मकजियुन अले। लेकिन यहां पर किसके गुलाम की आजादी का फैसला करें यह तय ही नहीं हो सकता, तो मकजियुन अले भी मजहूल और मकजियुन लहू भी मजहूल हो गया, तो जहालत ज्यादा हो गई। पिछले मसले में सिर्फ मकजियुन अले मजहूल था, मकजियुन लहू मजहूल नहीं था, और यहां दोनों मजहूल हैं। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वलौ हलफा अला अबदैनी, और जब दोनों ने कसम उठाई अला अबदैनी दो ऐसे गुलामों पर, याद रखिए ये अबदैन नकेरा है, और मैंने आपको बतलाया था नकेरा के बाद जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया है तो उसके लिए सिफत बनता है, और यहां अबदैन नकेरा है, और इसके बाद कुल वाहिदिन मिन हुमा यह है मुबतदा, और ली आहदी ही मा यह है इसकी खबर। तो ये पूरा जुमला इस्मिया आ रहा है नकेरा के बाद, तो यह सिफत बनेगा। और मौसूस सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं? मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं। अब तर्जमा सुनिए, कहते हैं वलव हलफा, और अगर दोनों ने कसम उठा ली यानी तालीक कर दी, तालीक को भी क्या कहते हैं? यमीन और हल्फ कहते हैं, कसम कहते हैं। तो कहते हैं वलव हलफा, और अगर दो आदमियों ने कसम उठा ली अला अबदैनी दो ऐसे गुलामों पर कि कुल वाहिद मिनहुमा ली अहदिहिमा कि दोनों गुलामों में से हर एक जो है इन दोनों में से एक का है, दोनों गुलामों में से एक गुलाम एक का है, लम यातिक वाहिदुम मिन्हुमा तो इस सूरत में एक भी गुलाम आजाद नहीं होगा, लिअन्न अल-मक्ज़ी अलैहि बिल-इत्क मजहूलुन इसलिए क्योंकि वो जिसके खिलाफ फैसला किया जाएगा आजादी का वो मजहूल है, जिस आका के खिलाफ आजादी का फैसला किया जाएगा कि इसका गुलाम आजाद हो गया है तो वो मकजी और आले बिल इत्क जो है वो यहां मजहूल है, वह कदा लिकल मकजी लहू और इसी तरह मकजियुन लहू जो है वो भी मजहूल है किस गुलाम की आजादी का फैसला किया जाए। फतफा हशतिल जहालतू तो जहालत कसीर हो गई, जहालत बहुत ज्यादा हो गई, फम तना अल कजा तो कजा मुमतने हो गई, फैसला करना मुमकिन न रहा। वफिल अब्दिल वाहिदी और एक ही गुलाम के अंदर यानी पिछले मसले में, वफिल अब्दिल वाहिदी और एक ही गुलाम के अंदर अल मकजी बिही मालूम मकजियुम बिही मालूम था, फगलब अल मालूम उल मजहूला तो मालूम जो है वो गालिब आ गया मजहूल पर। अब लफ्ज आ गया मकजियुम बिही, मकजियुम बिही किसे कहते हैं? वो जो काजी ने फैसला किया। तो यहां तीन चीजें हैं, एक मकजियुन अले, एक मकजियुन लहू और एक मकजियुन बिही। भाई फिर सुनो, मकजियुन अले किसे कहते हैं? जिसके खिलाफ फैसला किया जाए। मकजियुन लहू किसे कहते हैं? जिसके हक में फैसला किया जाए। और मकजियुन बिही किसे कहते हैं? जिसका फैसला किया जाए, वो जो काजी ने फैसला किया। तो पिछले मसले में एक ही गुलाम था और शेखैन रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया था? इस गुलाम का निसफ आजाद है और निसफ में क्या करेगा? सही। तो निसफ गुलाम का आजाद होना यह है मकजियुम बिही और यह मालूम है, मुश्तरका गुलाम है तो निसफ आजाद हो जाएगा और निसफ में क्या करेगा? सही। तो निसफ गुलाम की आजादी वो था मकजियुम बिही और मकजियुन लहू भी मालूम था क्योंकि एक ही गुलाम था, उसी के निसफ ने आजाद होना था। मकजियों भी मालूम और मकजियों लहू भी मालूम और तीसरी चीज जो थी मकजियों अलई ही, यानी जिसके खिलाफ फैसला होना था वो मजहूल था भाई। तो कुल तीन चीजें थी वहां पर भाई, एक मकजियुन अलैही, एक मकजियुन लहू, एक मकजियुन बिही। इन तीन में से मकजियुन अलै मजहूल था, किसके खिलाफ फैसला किया जाए। अलबत्ता मकजियुन लहू किसके हक में फैसला किया जा रहा है वो भी मालूम है कि एक ही गुलाम है उसी के हक में फैसला हो रहा है। और मकजियुन बिही किस चीज का फैसला किया जा रहा है कि इसका निसफ आजाद हो चुका है, तो वो मकजियुन बिही भी मालूम है। तो तीन चीजों में से एक चीज मजहूल है मकजियुन अलैही और दो चीजें मालूम हैं, तो मालूम चीजें ज्यादा हुई, यानी एक मकजी लहू और एक मकजी बिही वो ज्यादा हुई, तो वो जो ज्यादा थी वो जो मालूम थी वो मजहूल पर गालिब आ गई। और एक मकजी अलै मालूम नहीं था, वो मकजी अलै वहां पर भी हमने शुयू और तौजीह पर अमल कर दिया कि ये जो निसफ गुलाम आजाद हुआ है ये जैद और अमर दोनों की तरफ से मुश्तरका तौर पर आजाद हुआ है, और इसी तरह जो सही करेगा वो भी दोनों के हिस्से में मुश्तरका होगी भाई। तो वहां हमने शुयू और तौजीह पर अमल कर लिया, तो वो मजहूल भी क्या बन गया, मालूम हो गया। तो दो चीजें पहले ही मालूम थी, एक चीज मजहूल थी, तो ये मालूम चीजें ज्यादा थी, ये मजहूल चीज पर गालिब आ गई, लिहाजा फैसला करना मुमकिन हो गया। दो चीजें मालूम थी और एक चीज क्या थी, मजहूल, तो ज्यादा चीजें मालूम हैं वो उस एक मजहूल पर ये गालिब आ गई और वहां पर फैसला करना मुमकिन हो गया। लेकिन यहां पर इस मसले के अंदर मकजियुन अलै जो है वो भी मजहूल है, मकजियुन लहू वो भी मजहूल है, हां मकजियुन बिही मालूम है, मकजियुन बिही भाई। देखिए जैद का अपना गुलाम है, अमर का अपना गुलाम है, अगर जैद के गुलाम की आजादी का फैसला किया जाए तो जैद बन जाएगा मकजियुन अलैही और जैद का गुलाम वो मकजियुन लहू, और अगर अमर के खिलाफ फैसला किया जाए और उसके गुलाम की आजादी का हुक्म दिया जाए तो अमर क्या बन जाएगा, मकजियुन अलैही, और अमर का गुलाम क्या बन जाएगा, मकजियुन लहू। तो लिहाजा यहां मकजियुन अलै जैद है या अमर है पता ही नहीं चल रहा, और नीज मकजियुन लहू जो है वो जैद का गुलाम है या अमर का गुलाम है पता ही नहीं चल रहा। तो मकजियुन अलै भी मजहूल, मकजियुन लहू भी मजहूल, हां मकजियुन भी ही मालूम है, फैसला क्या करना है, एक गुलाम की आजादी का जी। फैसला क्या करना है, एक गुलाम की आजादी का फैसला करना है, तो मकजियुन भी ही एक चीज तो मालूम है, लेकिन दो चीजें मकजियुन अलै और मकजियुन लहू मालूम नहीं, वो मजहूल हैं। तो यहां पर जो है मालूम मजहूल पर गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि मालूम कम है और मजहूल चीजें ज्यादा हैं। बात समझ में आ गई जी, फिर देख लीजिए तर्जमा, कहते हैं लिअन्न अल-मक्ज़ी अलैहि बिल-इत्क मजहूलुन, इसलिए क्योंकि वो जिसके खिलाफ आजादी का फैसला किया जाएगा वो मजहूल है। वह कदालिक अल-मक्ज़ी लहू, और इसी तरह मक्ज़ी लहू जो है यानी जिस गुलाम के हक में फैसला किया जाएगा वो भी मजहूल है। फतफाहशतिल जहालतु, तो जहालत जो है वो कसीर हो गई। फमतना अल-क़ज़ाउ, तो फैसला करना मुमकिन न रहा। वफिल अब्दिल वाहिदी, और एक ही गुलाम के अंदर, यानी जो पिछले मसले में मुश्तरका गुलाम था, वफिल अब्दिल वाहिदी अल-मक्ज़ी बिही मालूम, और एक गुलाम के अंदर मक्ज़ी बिही मालूम था। फ़ग़लबल मालूमुल मजहूला, तो मालूम मजहूल पर गालिब आ गया। बात समझ में आ गई, तो वहां पर तीन चीजों में से दो मालूम थी और एक मजहूल, लिहाजा वहां फैसला मुमकिन था, और यहां तीन चीजों में से एक मालूम है और दो मजहूल, लिहाजा यहां फैसला मुमकिन नहीं, तो ये गुलाम उसी तरह गुलाम रहे गए, दोनों में से एक की भी आजादी का फैसला नहीं किया जा सकता। चलिए बस करें, बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।